olmak ne yani teorem düşünme hemen gören şarak ya çok çörün böyle tam yer tasma işi buraya. Sri Chaitan hemen o bıştım istedim tam yerine bhuta da yasvaya marpa kadar ne yandı daha de sıfıdan dikam. Jai Sri Krishna Chaitan ne prabunu tiyanan ile şadvayi tıkıda adı şiva sadık olur bakkı. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare. So far we have discussed, हमने अभी तक जो चर्चा किया है उसमें भगवान ने अपने जन्म का कारण बताया था, क्यों जन्म लेते हैं, कब जन्म लेते हैं, ये दोनों चीज बताई, कैसे जन्म लेते हैं, ये तीनों चीज बताई। तो ये फर्स्ट सेक्शन जो है वो हमें हमेशा याद रखना चाहिए, जब भी कोई हमें भगवान के जन्म के विषय में पूछे, भगवान के अवतार के विषय में पूछे या उस विषय में कभी भी हमें कोई चर्चा करनी हो तो ये चौथे अध्याय का जो फर्स्ट पार्ट है सेक्शन वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है डिस्क्राइब करने के लिए कृष्णा कब क्यों कैसे जन्म लेते हैं। तत्पश्चात भगवान ने जो हमने चर्चा किया था उसमें सब लोग मेरे भाव का अनुसरण करते हैं। अंत में हम चर्चा कर रहे थे कि जन्म कर्म के बाद भगवान ने कहा कि किस तरह से तुम मेरे भाव को या मुझे मेरी चेतना को प्राप्त कर सकते हो। व्हाट इज द ट्रांसलेशन दसवें श्लोक का? दस नंबर विथराग
जन्म कर्म चम्य दिव्यम हो गया था, वहाँ पे स्टॉप किए थे।
4.9 हो गया था,
4.9।
अच्छा कर्म जन्म कर्म के बाद स्टॉप
लास्ट
श्लोक
जो है वो रुक गया था, फर्स्ट टू 10 करना था बस एक लास्ट में
9 तक करवाए
लास्ट में।
नो प्रॉब्लम, आई थॉट कि हमने कुछ किया था आगे। ओके सो दस से शुरू होगा राइट। सो 9 तक भगवान ने ये चीज बताई थी जन्म कर्म, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, और उसके पश्चात भगवान ये बताते हैं कि जो इस वन हु नोज 9 का ट्रांसलेशन था कि वन हु नोज द ट्रांसेंडेंटल नेचर ऑफ माय अपीयरेंस एंड एक्टिविटीज डज नॉट अपॉन लिविंग द बॉडी टेक हिज बर्थ अगेन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड बट अटेन्स माय इटर्नल अबोड। ये भगवान ने बताया था कि मेरे जन्म और कर्म को समझने वाला व्यक्ति दूसरा जन्म नहीं लेता किंतु मेरे पास आता है। केवल इतने जानने से भी ज्यादा आगे एक स्टेप आगे है। एक चीज ये होती है कि हम जानते हैं कि भगवान के जन्म और कर्म दिव्य है, लेकिन जानने से और ज्यादा महत्वपूर्ण है उनकी चेतना में रहना। केवल जान लिया दैट्स गुड थिंग, बट उनके एब्जॉर्प्शन में उनमें उनकी चेतना में रहना दैट इज एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट 10 नंबर में भगवान इस चीज को बताते हैं। पढ़िए आप।
आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतः तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है।
यस। तो पुता मद भाव आगता मदभाव, मदभाव का प्रपद क्या लिखते हैं?
मेरे प्रति दिव्य प्रेम।
हाँ मेरे प्रति दिव्य प्रेम। तो कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उससे वो मुक्ति की ऊपर की अवस्था मानी जाती है। यहाँ पर स्पष्ट बताया कैसे, जैसे नौवें श्लोक में कहा था कि वो व्यक्ति को मृत्यु नहीं आती, वो मरने के बाद फिर से दूसरी बार जन्म नहीं लेता, मेरे पास आता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते क्या है?
नहीं
त्यक्ता देह हम पुनर्जन्म नहीं थी, उसको पुनर्जन्म नहीं, तो इसका अर्थ हुआ कि मुक्ति मिली। बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये, मुक्ति प्राप्त करना, कि पुनर्जन्म नहीं थी, फिर से नहीं होगा जन्म, अर्थात मुक्ति मिलेगी उसको। लेकिन उसके बाद वाले श्लोक में भगवान यहाँ पर बताते हैं कि मत भावम पुता मत भावम आगता, अर्थात त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति के ऊपर का ये स्टेज है। कौन सा स्टेज? मत भावम भक्ति। प्रेम भगवान के प्रति। सो आत्मा और शरीर का ज्ञान से भगवान के विषय में ज्ञान तो फार सुपीरियर, फार बेटर है ना, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है भक्ति। ऑफ कोर्स कृष्ण का ज्ञान भक्ति का ही अंश है। भगवान को जब जानते हैं, इसका अर्थ क्या है कि यू नो मोर, यू जब कृष्ण को अधिक जानते हो तब अधिक उनकी सेवा में शरणागति जुड़ सकते हो। सो बाय अंडरस्टैंडिंग कृष्ण वी बिकम प्योरिफाइड एंड वी बिकम सरेंडर टू हिम। तो यहां पर क्या लिखा है? भय, आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होना, तो ये भी मुक्ति का लक्षण है। तो आसक्ति रजोगुण का है, क्रोध तमोगुण का है और भय भी रजोगुण तमोगुण का है, तो ये तीनों से मुक्त होना। तीसरे अध्याय में इन तीनों के विषय में हमने चर्चा की थी कि जो आत्मा की जो कवरिंग है, आवरण है, वो इस काम क्रोध लोभ मोह से भरा हुआ है, विशेष करके क्रोध, आसक्ति और भय, इसका आवरण आत्मा के ऊपर रहता है। और तीसरे अध्याय के अंत में ऐसा कहा था कि जो ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जो ज्ञान की शरण लेते हैं, वो लोग इस प्रकार के आवरणों से मुक्त होकर के कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो सकते हैं। और इसके विषय में भगवान स्पष्ट कहे कि भूतकाल में ऐसे कई लोग थे जिन लोगों ने इस प्रकार से सिद्धि प्राप्त की। इसलिए ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूं, अभी मन में कुछ सूझ गया तो बता दिया, ऐसे इट्स नॉट लाइक दैट। भगवान यहां पर बताते हैं कि भूतकाल में ऐसा हुआ है, लेकिन कुछ प्रश्न यहां पर होते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कृष्ण को नहीं चाहता, कृष्ण के शरण में जाना नहीं चाहता, लेकिन वो कृष्ण की सेवा में अगर वो इंटरेस्टेड भी नहीं है, उसको ब्रह्म में आश्रय लेना है, या फिर वो कृष्ण का आश्रय ब्रह्म के पास जाने के लिए, ब्रह्म निराकार की बात कर रहे हैं, निराकार ब्रह्म उसके प्रति जाने की अगर किसी को इच्छा है, इन अदर वर्ड्स भगवान जो मत भाव बताए इसके अतिरिक्त और कोई कामना वाला कोई व्यक्ति है तो क्या करने का, तो उस व्यक्ति को क्या करने का, वो व्यक्ति क्या करेगा? समझ लो भगवान ने तो यहां पर बता दिया कि दे ऑल अटेन ट्रांसेंडेंटल लव फॉर मी भूतकाल में, लेकिन अभी मैं तो नहीं चाहता हूं कृष्ण के पास जाने के लिए, तो मेरे लिए कोई ऑफर है आपके पास? तो भगवान कहते हैं यस, तुम भी मेरी शरण में आकर के सफल हो सकते हो। वो बात बताई है 11वें श्लोक में। तो यहां पर मद्भाव शब्द को हम बल देते हैं किस चीज को लेकर के, क्योंकि जब कभी भी आपको कृष्ण के प्रति स्मरण या उनके प्रति आसक्ति होती है, अटैचमेंट के विषय में क्या कहा गया, अटैचमेंट टर्न हो जाता है भक्तों के प्रति, फिर फिर क्या है कौन तीन चीज कौन सी आसक्ति
राग भय क्रोध
राग भय और क्रोध
अटैचमेंट
यस तो इसका स्पिरिचुअलाइजेशन होता है मद्भाव के माध्यम से किस तरह से आसक्ति होती है भगवान के प्रति इसका वर्णन है आदव श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति तत्वनिष्ठा देन आसक्ति राइट ये प्रोसेस है ये जो कवरिंग है हमारे आत्मा के ऊपर जो मैल है काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि इसका निवृत्ति हो जाता है अनर्थ निवृत्ति के मार्ग से उसका शुरू होता है ये प्रोसेस का शायद हमने चर्चा पहले किया है या आगे होगा आदव श्रद्धा तथा साधु संग इस शुरुआत में श्रद्धा होती है फिर साधु संगति होती है साधु संगति से आपको भजन क्रिया सिखाया जाता है कि माला का जप करना है साधन भक्ति करना है ग्रंथों को पढ़ना है भक्तों का संग करना है प्रसाद खाना है भजन क्रिया के पश्चात ये प्रोसेस दवाई का डोज शुरू हो जाता है तो अनर्थ जो है जो कचरा है हृदय में वो स्वच्छ हो जाता है तत्पश्चात निष्ठा के स्तर आता है संक्षिप्त में बता रहा हूँ निष्ठा में क्या होता है वो व्यक्ति का पतन नहीं हो सकता स्थिर हो जाता है और फ्लक्चुएशन होता है ना बहुत सारा कि आज मैं बहुत ज्यादा भक्ति में हूँ कल कम हो गया कल अचानक से जो पूरा कृष्ण कॉन्शियस डाउन हो गया फिर एक दिन अचानक धाम में गए तो ऑन पीक पर पहुंच गया तो ये निष्ठा में ऐसा नहीं होता है निष्ठा में स्टडी रहता है निष्ठा के बाद आसक्ति अटैचमेंट अटैचमेंट में उसके बिना चलेगा नहीं आपको और उसके बाद फिर भाव और उसके बाद फिर प्रेम राइट रुचि आसक्ति के बाद रुचि रुचि के बाद भाव भाव के बाद प्रेम तो ये स्टेजेस है हमारे भक्ति भक्ति के तो आसक्ति को हम कृष्ण भक्ति में फिर क्रोध को भक्त द्वेषी जने भक्त के द्वेषी लोग है जो भगवान के भक्तों का द्वेष करते हैं उनके प्रति क्रोध को करना चाहिए और भय
माया
यस मटेरियल लाइफ का भय भौतिक जीवन या आध्यात्मिक जीवन की जब चुनाव की स्थिति आती है एक बार प्रभुपाद बता रहे थे मैं अभी कब सोच रहा था कल या परसों मैं सोच रहा था इस बात को बस यहीं से कहीं से गुजर रहा था तो ऑन द वे मैं इस बात को सोच रहा था कि प्रभुपाद एक बार प्रार्थना किए थे भगवान को कि एक बार तो नहीं वो तो निरंतर ही करते थे लेकिन प्रभुपाद कहते थे कि मुझे कृष्ण अपनी माया से पूरा रक्षण देना प्लीज प्रोटेक्ट मी ऑलवेज फ्रॉम योर माया और ऐसे मैं देखा कि उनके शिष्य भी कई बार मैं सुना है उनके शिष्य किस तरह से प्रार्थना करते रहते हैं ऑलवेज देयर इज अ मोड इन द डिवोटीज हार्ट भक्तों के हृदय में कि कृपा करके आप अपनी माया से मेरा रक्षण करना ऑलवेज सो दिस इज अ फियर कि मेरा पतन ना हो जाए मैं आकर्षित ना हो जाऊं किसी बुरी चीज से या फिर माया के प्रति मैं आकर्षित ना हो जाऊं ये भावना अर्थात ऑफकोर्स कृष्ण के भक्त को कोई भय नहीं होता अभय चरण अरविंद कृष्ण के चरण कमल अभय देने वाले हैं लेकिन माया के जीवन से या भौतिक जीवन से अवश्य भय लगता है तो इस तरह से भयभीत होना जब आध्यात्मिक जीवन के प्रति जो वो परम दृष्टवा निवर्तते जब आपका आध्यात्मिक आकर्षण बढ़ता है तो भौतिक आकर्षण कमजोर होता ही है इसमें कोई रिसर्च की आवश्यकता नहीं है ये प्रूवन चीज है जैसे जैसे आप कृष्ण भक्ति में आकर्षित होते रहते हैं ऑल द अदर वे अराउंड अगर हमारा आकर्षण माया के प्रति बढ़ रहा है और जिसके कारण हम परेशान हैं अगर हमें लगता है कि आजकल मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है, मैं बड़ा चंचल हो रहा है, या मुझे मैं इतना एनर्जेटिक स्पिरिचुअली फील नहीं कर रहा हूँ, इसका अर्थ क्या है? मेरा स्पिरिचुअल अट्रैक्शन डाउन हो रहा है, मेरा आध्यात्मिक आकर्षण जो है वो कम हो रहा है, इसका परिणाम है ये। तो इसलिए ये तीनों को हम बदल सकते हैं। अगर पुता मद भाव मुझ में अगर स्थिर होता है, मेरे में मन लगाकर स्थिर होता है, तो ये अवस्था को वो प्राप्त कर सकता है। तभी आगे के आगे का उस लोग बड़ा फेमस है, पढ़िए। हाँ पूछिए।
ये सारी चीजें सिद्ध होने के बाद एक के बाद दूसरे में जाती हैं या पार्शियल होते भी आगे बढ़ जाते हैं? जैसे कि अब श्रद्धा हो गई, जब पूर्ण श्रद्धा हो गई फिर साधसंग, और जब साधसंग हुआ तो पूर्ण रूप से भजन क्रिया में लग गए, और भजन क्रिया के बाद अनर्थ सारे अनर्थों की निवृत्ति। स्टेजेस वाइज पूरे आते हैं या पूरा नहीं होते हुए भी थोड़ा फ्लक्चुएट होता रहता है?
फ्लक्चुएट होता रहता है। इसका इस तरह से इसको समझना चाहिए कि एक ये प्रोसेस है, तो ये प्रोसेस में श्रद्धा शुरुआत है लेकिन ये हमेशा रहेगा। श्रद्धा कमजोर होने के बाद बाकी सारी चीजों में भी इसका रिफ्लेक्शन आता है। फॉर एग्जाम्पल ये वन प्लस वन प्लस वन ऐसे हो रहा है, उसका भी अस्तित्व रहेगा इवन एट द एंड, अंत के समय में भी श्रद्धा का अस्तित्व रहता है। अनर्थ निवृत्ति जो है वो भजन क्रिया के प्रोसेस से नष्ट होता है अनर्थ। जैसे दवाई लेना शुरू करते हैं तो अनर्थ निकल जाते हैं। अनर्थ का अर्थ होता है
बीमारी,
काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष आसक्ति इत्यादि, ये सब कचरा है हृदय का। पाप की इच्छा, भोग की इच्छा, भौतिक इच्छा, ये कचरा है हृदय में। ये अनर्थ निवृत्ति होने का शुरुआत हो जाता है भजन क्रिया के साथ, लेकिन ये अनर्थ निवृत्ति इतना गहरा है हमारा अनर्थ का ये ढेर कि वो आसक्ति रुचि तक हमारा पीछा नहीं छोड़ता, यहाँ तक भाव तक भी हमारा पीछा नहीं छोड़ता। मीन्स धीरे 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 लाइक 50% गॉन, 80% गॉन, 20% गॉन, बस अब 10% बचा है। लेकिन उस समय आप ऑलरेडी आसक्ति या रुचि तक पहुंच गए। प्रभुपाद एक जगह कहे, आई मीन सुना है मैंने कि अनर्थ निवृत्ति एक ऐसा लेवल है, एक ऐसा लेवल है अनर्थ निवृत्ति का स्टेज कि उससे ऊपर आने में ऐसे ऐसे यू नो लाइक इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, लेकिन ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, बहुत टाइम लगता है उसमें, कई जन्म बीत जाते हैं।
डूबते समय पानी में डूब रहा होता है फिर निकलता है फिर डूब।
हाँ, और दूसरा एग्जांपल, श्रद्धा से अनर्थ निवृत्ति तक को आप क्लाइंबिंग द माउंटेन गिन सकते हो। एक पर्वत पर चढ़ रहे हो आप और अनर्थ निवृत्ति वो पीक है ऊपर, और उसके आगे वाले जो स्टेजेस है निष्ठा आसक्ति वो पर्वत से उतरने का है नीचे, इट इज क्लाइंबिंग डाउन, वो क्लाइंबिंग अप है, ये नीचे उतरना है। तो ऊपर चढ़ने के समय पे बहुत कष्ट होता है लेकिन नीचे उतरना आसान हो जाता है। जब आप नीचे उतरते तो आसान है,
प्रयास लगता है
उसमें, लेकिन उसमें कहने का तात्पर्य कि अनर्थ निवृत्ति को क्रॉस कर जाना, इसमें जन्म निकल जाते हैं, इसमें बहुत समय चाहिए। इसलिए बार बार हमें साधु संघ के विषय में, भक्तों के विषय में, एक्चुअली हमारा प्रोसेस ही पूरा है। हम लोग ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं बनाते कि इस जीवन में मुझे ये सब फिनिश करना है, अनर्थ निवृत्ति इसके बाद ये इसके हम फिनिश करना है। और इसका अर्थ ये भी नहीं होता है कि अनर्थ निवृत्ति यू नो 2-5 साल में प्राप्त हो जाती है, ये मत समझना। एक भक्त मुझे बता रहे थे अहमदाबाद में, वो मुझे बता रहे थे कि दीक्षा ले लिया, 2-5 साल के बाद ब्राह्मण दीक्षा लिया, और 2-5 साल और 10 साल जितना हो गया दीक्षा, अब तो मैं भाव की स्थिति में आ ही गया हूँ। अब मैं अगर मैं माधुरी लीला के विषय में नहीं सुनूंगा, अभी अब मैं राधा कृष्ण के विषय में नहीं सुनूंगा तो कब सुनूंगा, मर जाऊंगा तब। अगर अब मैं मंजरियों के विषय में बात नहीं करूंगा, लेक्चर नहीं दूंगा या सुनूंगा नहीं, तो कब मैं दूसरे दिन में करूंगा। इसका अर्थ होता है कि आई एज्यूम इट कि मैंने सारा ये सारी चीजों को प्राप्त कर लिया है। सो आई एम ही टोल्ड मी लाइक दिस, आई सेड यार मे बी दैट्स योर रियलाइजेशन। लेकिन वी डोंट टेक, आई डोंट एग्री इन दिस। और शास्त्र में भी हम पढ़ते हैं कि इसका सबके सिम्टम्स है, तो बिना सिम्टम्स के आप कैसे इसको अचीव कर सकते हो। अगर हमारे में सारे दोष अगर अभी भी दृश्यमान है तो हम ये ढोंग क्यों करें कि मुझ में ये सब प्रकार के अनर्थ निकल गए हैं। Why to make such, you know? So अनर्थ निवृत्ति टेक्स लॉन्ग टाइम, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता है अरे प्रभु जी अभी अनर्थ निवृत्ति को कहाँ क्रॉस कर पाएंगे, होता है तो होने दो, जैसे गाड़ी चल रही है करने दो, मुझसे इससे अधिक नहीं होने वाला, ये मेरी हाइट है, ये कैपेसिटी, मैं इससे अधिक और कुछ नहीं कर सकता। ये हार मान ली हमने कि हम इससे अधिक कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा होता तो भगवान क्यों कहते ऐसा कि पुता मत भाव मागता, भगवान क्यों कहते ऐसा। अगर ये संभव नहीं होता एक ही जन्म में तो भगवान क्यों कहते ऐसा, नहीं तो भगवान यहीं पर नहीं बता देते इसी स्थान पे कि कई कई जन्म के पश्चात पुता मत भाव, कई भूतकाल में ऐसे कई लोग हुए थे जिन लोगों ने अनेक अनेक जन्म के पश्चात मुझे मेरे भाव को प्राप्त किए, ऐसा कहाँ लिखा है। इसका अर्थ स्पष्ट होता है कि इसी जन्म में ये संभव है, हमारे प्रयास कमजोर हो रहे हैं, हमारे आसक्ति तगड़ी है, इसलिए हमें प्रयास अधिक करना चाहिए, हमें और अधिक जुड़ना है। ये संतुष्ट नहीं हो जाना हाँ अब तो मैं देखो ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ, प्रभु लंबा लिस्ट हो गया, माला का जब भी कर रहा हूँ, चार दिन का पालन कर रहा हूँ, ये तभी तो मैं इतना सब तो कर रहा हूँ, इससे अधिक और हाउ मच यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम अ पर्सन लाइक मी। बट दैट्स नॉट द लिमिट, यू कैन डू मच मोर देन व्हाट यू आर इवन इमेजिन। और इसको अब नाउ द क्वेश्चन कम्स, अब मुझे कैसे पता पड़ेगा कि मैं और क्या कर सकता हूँ। दैट इज डॉक्टर, साधु गुरु, इज़न्ट इट। आप वैष्णव के पास जाएंगे, गुरु के पास जाएंगे, जब गुरु देखेंगे आपकी इच्छा को कि ही हैज वेरी स्ट्रांग डिजायर, देन थिंग्स फॉलो ऑटोमेटिकली। सो दिस इज नॉट अ कंप्लीशन ऑफ वन स्टेज। यस, भरत महाराज, यस,
भाव स्टेटमेंट के प्रति आसक्त हो,
यस यस, दैट इज बिकॉज ऑफ इज असली मिस्टेक विच वॉज एग्जाम्पल। एक्चुअली आप तात्पर्य में पढ़ना, प्रॉपर लिखते हैं कि भरत महाराज का जो एग्जाम्पल है, केस है, वो एक एग्जाम्पल क्रिएट करने के लिए ही ये पूरा बनाया हुआ है सिस्टम भरत महाराज का। लेकिन भरत महाराज का पतन नहीं हुआ था, भरत महाराज डिड नॉट फॉल। एक्चुअली पतन चेतना का ही होता है, शरीर के पतन को पतन नहीं कहते। अगर मैं मेरा शरीर चला गया, अगर मेरा देहांत हो जाता है, इसको पतन नहीं बोलते। अगर मेरी चेतना कृष्ण भक्ति से कमजोर हुई तो उसको पतन बोलते हैं। इफ आई गिव अप माई बॉडी विदाउट अचीविंग सक्सेस, दैट्स नॉट फॉलन। बट इफ आई यू नो आई फॉल डाउन फ्रॉम माई कॉन्सियसनेस, फ्रॉम माई सर्विसेस टू कृष्णा, दैट इज फॉलिंग। तो भरत महाराज का पतन, हाँ ऑफकोर्स आपके वो उसमें है कि जब ही वॉज पहले ध्यान में रहते थे, बाद में हिरण के प्रति उनका ध्यान रहता था, सो दैट वॉज देयर, लेकिन उनका वो टेम्पररी जो शॉर्ट कमिंग था दैट इज नॉट फॉलिंग, वो पतन नहीं था उनका. बिकॉज वाई इट इज नॉट नेक्स्ट लाइफ में रिमेम्बर एवरीथिंग, इसलिए उसको पतन नहीं बोलते. लेकिन एग्जाम्पल अच्छा है बताने के लिए कि भाव की अवस्था के पीछे भी अनर्थ पीछा नहीं छोड़ते, तो इसलिए इसको सावधानी से लेना चाहिए. ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अब तो मैं मंजरियों के विषय में बात कर सकता हूँ या राधा रानी का सोच सकता हूँ. तीन दिन पहले एक भक्त मुझे बता रहे थे कि ये गलती करता हूँ, वो अपना जस्ट कन्फेस कर रहे थे कि आई एम डूइंग दिस मिस्टेक ऐसे, उसकी वेयर इज वीक स्पिरिचुअली वो मुझे बता रहे थे. एंड देन ही वाज टॉकिंग अबाउट राधा रानी. तो फिर मैंने उनको कहा कि देखो राधा रानी इतने पवित्र है कि हमारी पहुंच ही नहीं उन तक, वी डोंट हैव इवन अ रीच, हम उनके चरणों तक पहुंचने की भी शक्ति नहीं है, बिकॉज स्पिरिचुअली वी आर सो वीक. सो डोंट अंडर एस्टिमेट द पोजिशन ऑफ राधा रानी. देन ही वॉज लाइक आर यू श्योर? आई सेड व्हाट श्योर, दिस इज द फैक्ट. तो फिर वो आई मीन ऑफकोर्स ही एक्सेप्टेड के आई मस्ट थिंक ऑन माई प्रोसेस ऑन माई साधना इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ऑफ राधा रानी. ऑफकोर्स विसर्व राधा रानी चैतन्य महाप्रभु राधा रानी है, उसके मिक्स स्वरूप है, बट वी डोंट टॉक अबाउट इट अंटिल वी गेट प्योरिफाइड, वी गेट प्रॉपर यू नो ग्रीन सिग्नल फ्रॉम योर गुरु. सो वी मस्ट अंडरस्टैंड. एक बार एक भक्त ने पूछा था तो मैंने उनको कहा देखो जब तक आपके गुरु आपको परमिशन नहीं देते तब तक आप गोस्वामियों के ग्रंथ को नहीं पढ़ना, जब तक आपके गुरु आपको परमिशन नहीं देते तब तक आप राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं के विषय में मत पढ़ना, यू नीड टू गेट परमिशन फ्रॉम योर गुरु महाराज, बिकॉज ही नोज वेर यू आर, हाउ यू कैन जज. दो साल पांच साल हो गया मेरा काम, यू कैन डू इट दैट वे, राइट. मदभावम, सम पीपल से दैट मर्जिंग, मदभाव मीन्स मर्जिंग. मायावादी लोग कहते हैं कि भगवान में मर्ज होना मदभाव का अर्थ होता है कि वो, बट यहां पर भगवान प्रभुपाद से टू अचीव कृष्णस लव नॉट कृष्णस पोजिशन. सो वी गो फॉर द टेक्स्ट नंबर 11.
जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ. ये बात प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पद का अनुगमन करता है.
ये था वहां पर बद, जो जिस भाव से मेरी शरण में आता है उसको उस भाव से मैं रिसीव करूंगा. भगवान ने वचन दिया है यहाँ पर, किसी को वो हमने आगे प्रश्न किया ना, किसी को ब्रह्म के विषय में, यहाँ तो नो प्रॉब्लम. कृष्णा डिजायट्री है, जो जिसको जो चाहिए, अकामो सर्व कामो मोक्ष कामो इधर, जिसको जो चाहिए कृष्ण कैन फुलफिल, कृष्ण कैन फुलफिल. इसलिए जिसको जो अगर ये हमारे भक्तों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे हृदय में जो भावना है भगवान उसको रिसिप्रोकेट करते हैं, और ये इतना सटल होता है कि एक एक स्मॉल डिजायर को ध्यान में रखा जाता है. योर स्मॉल डिजायर इज टेकन केयर. फॉर एग्जाम्पल जैसे हजार उदाहरण है चैतन्य लीला में कि उनके हृदय में, किसी के भक्त के हृदय में एक थोड़ा सा इच्छा था कि मैं ये प्राप्त करना चाहता, भगवान उसको इच्छा को पूरा करते. जैसे कर्द मुनि है, देवती के हस्बैंड, तो कर्द मुनि तो तपस्या कर रहे थे लेकिन भगवान वहां पर प्रकट हुए उनकी तपस्या के, और प्रकट होकर बोले यू नो भगवान के आंख में से एक बिंदु गिर गया उनकी उनकी भक्ति से प्रसन्न करके हो करके, और वो जो बिंदु है उसका सरोवर बना, बिंदु सरोवर सिद्धाश्रम के पास। तो वहां पर भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया, लेकिन क्या कहा कि कर्दमुनि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, लेकिन तुम्हारे हृदय में कहीं पर एक छोटी सी भौतिक इच्छा है। क्या इच्छा है? तुम गृहस्थ जीवन जीना चाहते हो, तुम शादी करना चाहते हो। ही कंडेम सो बैडली, कर्दमुनि अपने आप को कोसने लगे, हाय हाय कहां फंस गया मैं। साक्षात भगवान के दर्शन हो गए और नाउ इट वॉज टाइम दैट आई कुड बी डिलीवर्ड, मेरा उद्धार हो सकता था। लेकिन भगवान ने उद्धार करने के बदले क्या किया, कहा कि तुम्हारी एक इच्छा है उसको मैं पूरा कर देता हूं। एंड ही फेल्ट सो बैड, बट कृष्ण से डोंट फील बैड, इसको बुरा मत मानो, क्यों, मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। और पत्नी भी भगवान अरेंज करो, भगवान पत्नी का अरेंजमेंट भी भगवान बोले मैं ही करूंगा अरेंजमेंट, आई विल सेंड यू। तो मनु की बेटी को दे दी, नंबर वन इन द यूनिवर्स देवहूति। तो देयर वाज दैट, एक एग्जांपल ये है, ऐसे कई एग्जांपल है। जैसे ब्राह्मण की पत्नियां वृंदावन में, तो ब्राह्मणों की पत्नियां आई थी भगवान के पास और भगवान को कहा कि हम लोग अब सब कुछ छोड़ छाड़ के आए घर से, अब हम वापिस नहीं जाना चाहते। लेकिन उनके हृदय में थोड़ा सा मे बी 0.1% और ऐसा अट्रैक्शन था फैमिली के प्रति, शरणागत पूर्ण रूप से नहीं, या पूर्ण रूप से थे, लेकिन व्हाट ही डिड, जब भगवान ने कहा एक बार परीक्षा किया, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, तुम सब गृहिणी हो, पत्नियां है ब्राह्मणों की, तुम चले जाओ वापिस, ये ठीक नहीं है, ये किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं है, तुम वापिस चले जाओ अपने अपने घर संभालो, यू गो बैक। तो भगवान ने जब आदेश दिया तो वो आदेश को मान करके चले गए वापिस। लेकिन सेम थिंग गोपियों ने कहा कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ करके आए रासलीला के समय पे, तो भगवान ने कहा चले जाओ वापिस, कैसे लोग मिड ऑफ द नाइट अंधेरे में आते, यहाँ जंगली जानवर है, इट्स नॉट नेवर अ गुड आइडिया, गो बैक, वापिस चले जाओ। तो गोपियों ने बोला कि अब तो हम जा नहीं सकते, आप हमें किसी की परवाह ही नहीं है, वी डोंट केयर फॉर एनीथिंग एल्स, और हम जाएंगे भी नहीं इवन दो यू से। सो सी, ये था वहां पर भजन थे, जब भगवान ने देख लिया डिटरमिन है, तो फिर रासला किया भगवान ने गोपियों के साथ। आई मीन इट्स वेरी सटल, ये प्रसाद है पूरे सर्वासा, सुना है ना आपने, अध्यात्मिक गुरु आपके हृदय में जो कोई भी कामना है वो पूरी करवा देते, वो बाकी नहीं रहती। सो वी हैव टू बी केयरफुल डिजायर करने के प्रति। तो ये यथा महाप्रभा जयंती ब्रह्मवादी ब्रह्म की उपासना करते हैं तो भगवान उसको भी, यहाँ पर भगवान कहते हैं एवरीवन फॉलोस माय पाथ इन ऑल रिस्पेक्ट, सब लोग मेरे पास ही आते हैं अंततोगत्वा, एवरीथिंग, क्योंकि एवरीथिंग आई एम द कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग, सब कुछ मुझसे चलता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी इसमें कमेंट करते हैं, इट्स अ लॉन्ग कमेंट्री बट आई जस्ट से द लास्ट लाइन, नॉट ओनली माई डिवोटी इज रिसिप्रोकेट विथ मी बट इन ऑल डिफरेंट वेज ऑल काइंड ऑफ ह्यूमन बींग फॉलो माई पाथ, मे इट बी ज्ञानीस, कर्मिस, योगीस, वर्शिपर ऑफ डेमीगॉड्स, इन अदर वर्ड्स बिकॉज आई इनकॉर्पोरेट इन माई सेल्फ ऑल आइडेंटिटीज, ऑल द प्रोसेस ऑफ ज्ञान, कर्म एंड सो ऑन कॉन्स्टिट्यूट द पाथ टूवर्ड मी। अगर आप योगा लेडर भी देखोगे, अगर योगा लेडर की टॉप में अगर कृष्ण है, तो जो लोग भी अलग अलग मार्ग में जाते हैं अंत में किसके पास जाते, कृष्ण के पास ही जाते एक रूप से देखा जाए तो। एवरीवन हैज टू फॉलो, देयर इज नो अदर चॉइस, एवरीवन हैज टू फॉलो, बट देन कृष्ण रिसिप्रोकेट अकॉर्डिंगली, जो जिस भाव से आता है, चोर चोर बोलता है मुझे चोरी करने दो, तो तो बोले तथास्तु। पुलिस बोलता है एक आदमी को मेरे पास भेजो, कब से किसी को पकड़ा नहीं है। भगवान बोलते तथास्तु। चोरी करता है पुलिस के, तू जाए चोरी कर उस घर में, और पुलिस वाले को बोलते क्या जाओ वहां से पकड़ के लेके आया उसको। सो कृष्ण फुलफिल्स एवरीवन्स डिजायर। जो लोग भगवान की लीला में सम्मिलित होना चाहते हैं उनको ये सुविधा देते हैं। जो लोग केवल मुक्ति की कामना करते तो भगवान उसकी कामना पूरी करते हैं। जो लोग ऐसा चाहते हैं कि यू नो 10% डिवोशनल उसका है, 10%, बट वी हैव टू बी केयरफुल। आई मीन द पॉइंट ही इज वी आर मेकिंग इज दैट कोई अगर भोगवादी है या मायावादी भी है तो भगवान भी उसको इसी प्रकार से डील करते। हिरण्यकशिपु, तो हिरण्यकशिपु को भी भगवान ने छोड़ा थोड़ी है, उसको भी तो यू नो ही ऑल्सो अपीयर्स टू हिम। सो इन ऑल द वेज आई रिसिप्रोकेट विथ एवरी वन। जैसे किसी को जन्म जन्म लेना है, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल लेते हैं ज्ञानी, और जो लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरे जन्म और कर्म नश्वर है और मेरा शरीर माया से बना हुआ है, और फिर भी मेरे शरण में टेम्पररी भी आना चाहते हैं मायावादी, ऐसे लोग भी है, तो मैं उनके लिए भी व्यवस्था करता हूँ क्या, उनको भी टेम्पररी जन्म और कर्म बार बार लेने पड़ते है। आई मीन एग्जैक्टली जितने परसेंटेज जो है सेम भाव सेम मूड। इन लोगों ने ज्ञानी ने सोचा कृष्ण का शरीर माया से बना हुआ है और वो उनके जन्म और कर्म नश्वर है, तो वही चीज उनको अप्लाई कर देते सेम चीज, तो उनको क्या मिलता है, उनका शरीर जो है वो नष्ट होने वाला मिलता है और उनको उनके जन्म और कर्म नश्वर हो जाते हैं। किनके? मायावादियों के। एग्जैक्टली ना कम न ज्यादा। भगवान इस तरह से रिसिप्रोकेट करते सबके साथ, सबके एवरीवन। सो अगर कोई ये कहता है लेट्स सी व्हाट प्रभुपाद सेज इन फर्दर। I just mentioned in my notes here one katha. So the katha, I don't tell the whole katha, but I just tell you some part of it. एक व्यक्ति था जगन्नाथ पुरी गया था, और जगन्नाथ पुरी में आपने देखा है पुरी राइट, तो पहले के समय में जगन्नाथ पुरी में क्या होता था, अठार नाला करके एक स्थान है, और अठार नाला वो पुरी का बाउंड्री माना जाता था। अगर कोई व्यक्ति अठार नाला को क्रॉस किया इसका अर्थ हुआ है कि जगन्नाथपुरी में प्रवेश किया उसने, ऐसा माना जाता था। तो एक व्यक्ति ने बहुत समय कहीं कोई ब्राह्मण था, उसने जगन्नाथ जी का महिमा पढ़ा, उसमें लिखा है जगन्नाथ जी का दर्शन करने से एक बार उसके मुक्त व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। व्हाट, बस जगन्नाथ जी का एक बार दर्शन करने से मुक्ति मिल जाती? इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, कैसे हो सकता है। तो वो सोच रहा था कि जब जाऊंगा देखूंगा प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो ही वॉज नॉट बिलीविंग दिस, ये हो ही नहीं सकता। तो गया जगन्नाथपुरी, जाने जाकर के दर्शन करने गया, दर्शन करके वापिस आया, बाहर आया, बाहर आकर के यू नो गुस्से में फ्रस्ट्रेशन में बोलता खाली खाली फोकर के सब महिमा सुना, कुछ हुआ नहीं, कोई मुक्ति मुक्ति होती नहीं है। तो एक ब्राह्मीण कोई संत जगन्नाथपुरी में कोई वैष्णव था, उसने उसको देखा, बोला क्या बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है? अरे क्या परेशान है? देखो क्या लिखा है तुम्हारे जगन्नाथपुरी के विषय में, जगन्नाथ भगवान का दर्शन होते ही उसको मुक्ति मिल जाती है, ये क्या सच? एक्चुअली वो जो मिलने आया था जगन्नाथ भगवान ने ही भेजा था उसको, वो आदमी को। तो बोले अच्छा, बोले एक काम करो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तो उसने थोड़ा सा आशीर्वाद दिया, और एक सेकंड में उसने देखा कि जितने भी लोग जगन्नाथ जी के सिंह द्वार से बाहर आते सब चार हाथ वाले आ रहे हैं एक सेकंड के लिए सबको दिखाया व्हाट तो मेरे चार हाथ क्यों नहीं हुए तो बोले तुमने कभी इच्छा किया ही नहीं तुम्हें तो अविश्वास था तुम्हें तो विश्वास ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है ये था महाप्रभुपाद जयंती बजा में हम जो जिस भाव से आएगा उसको उस भाव से रिसिप्रोकेट करते भगवान सो नाउ द क्वेश्चन कम्स कि अगर ऐसा है कि भगवान सबकी इच्छाओं को पूर्ति करते हैं सबको जो चाहिए दे देते हैं तो फिर अधिकतर लोग भगवान के पास क्यों नहीं आते दूसरों की पूजा करने क्यों जाते हैं वाइसो ऐसा क्यों होता है तभी नेक्स्ट श्लोक में इसका यस
जो श्लोक है 16 चैप्टर में सुरिम योनि उसमें भगवान के कहते हैं कि मतलब जो और ज्यादा आसुरी मतलब कार्य करते हैं उनको मैं मतलब जन्म जन्म तक मेरे पास वो आते नहीं है कभी नहीं आते तो मतलब ये दो श्लोक कैसे कोरिलेट कर हमें भगवान बोलते हैं कि एक तरह से सभी लोग मेरे पद का अनुगमन करते हैं इवेंचुअली एज यू सेड मतलब भगवान के पद प्राप्त करेंगे मगर भगवान ऐसा भी कह रहे हैं कि जो बहुत ज्यादा आसुरी कार्य करते हैं उनको मैं ऐसे नारकीय योनि में रखता हूँ कि वो जन्म जन्म तक कभी मेरे पास आ नहीं पाएंगे
यस बट एक क्लॉज है इसमें अगर वैष्णव की कृपा हो जाए तो हो सकता है लेकिन जनरलाइज रूप में वो लोग अब सोचिए कि दो प्रकार की माया है एक है योग माया और एक बहिरंग माया लेकिन है ही दोनों भगवान की शक्ति तो यही तो भाव है उच्च कोटि के भक्तों का क्या कि हर एक व्यक्ति चाहे वो भौतिक रूप से लगा है या आध्यात्मिक रूप से लेकिन वो माया को ही सर्व कर रहे हैं योग माया को सर्व करेगा या महामाया को तो जो आसुरी भाव से जुड़े हुए लोग हैं कृष्ण के तो वो लोग कृष्ण को भूलना चाहते हैं तो कृष्ण उनकी इच्छा को भी पूरा करते हैं लेकिन वो लोग कृष्ण से स्वतंत्र नहीं हो सकते क्योंकि सारे नियम रूल्स रेगुलेशन ये सब बनाए हैं कृष्ण ने बहिरंग शक्ति माया जो है वो बनाई है कृष्ण ने इसलिए उनसे स्वतंत्र कोई नहीं हो सकता है एवरीवन हैज टू फॉलो हिज पाथ ओनली दे कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट एट ऑल भगवान से स्वतंत्र कोई भी नहीं हो सकता है
मतलब आप बोल रहे हैं कि इसको हम ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं मम वर्तम अनुवर्तन्ते मतलब भगवान की बनाई हुई जो शक्ति है उसके उसके बाहर मतलब
कोई नहीं जा
सकता नियंत्रण में ही रह के तो मतलब वही बात
यस बट जैसे सबकी इच्छा को भी भगवान टेक केयर करते हैं जैसे ज्ञानी कर्मी के नीचे है आप जो बता रहे हो वो लोग असुरी तो वो लोग भी भगवान से स्वतंत्र नहीं हो सकते बट उनकी इच्छाओं को भी आदर दिया जाता है यू नो विथ फुल रिस्पेक्ट टू देयर डिजायर दे आर अलाउड टू डू व्हाट एवर नॉनसेंस दे वांट टू डू ओके द नेक्स्ट श्लोक
Men in this world desire success in creative activities and therefore they worship the demigods. Quickly, of course, men get results from fruitive work in this world.
ये भी प्रसिद्ध श्लोक होगा कोई What is that?
कांक्षता
कर्मणा सिद्धि यन्ते इह देवता Yes. तो कुछ भौतिक इच्छा की प्राप्ति के कारण कांक्षता कर्म नाम सिद्धि कर्मणा कर्म की सिद्धि के लिए लोग जाते हैं देवताओं की पूजा करने के लिए एक क्वेश्चन का आंसर है आगे वाले क्वेश्चन का कि लोग ज्यादातर भगवान की शरण में क्यों नहीं आते इसका यही रीजन है क्योंकि उनके पास भौतिक इच्छा अधिक है अधिकतर लोग भौतिक इच्छा रखने वाले लोग होते हैं और ये लोग अपने अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए वो लोग देवताओं के शरण में जाते हैं।
और वो क्षिप्रम
क्षिप्रम क्विकली ऑफ कोर्स क्विकली मैन गेट रिजल्ट्स फ्रॉम रेडियो वर्क इन दिस वर्ल्ड। एक्चुअली कृष्णा के सर्वेंट है डेमी गॉड्स। एक रूप से देखा जाए तो यहां पर एक चीज ये भी समझना चाहिए जो देवताओं की शरण करने वाले जो लोग हैं उनका एक सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि वो कितना भी उपासना करे कितने भी पूजाएं करे कुछ भी करे अनुष्ठान करे उनका प्योरिफिकेशन नहीं होता है शुद्धिकरण नहीं होता है उनका। हाँ वो स्टेप अप हो सकते हैं थोड़ा सा कि स्टार्ट थिंकिंग नाउ सरेंडरिंग थोड़ा ओबेडियंट होने का भाव होगा पर प्योरिफिकेशन नहीं हो सकता। और देवता लोग भी नश्वर होते हैं और इसलिए उनके भक्त लोग भी नश्वर है। सेम ये तमाम प्रपद्यन्ते यजन्ते इह देवता इह शब्द का और करते है सब नष्ट हो जाता है। तुम भी नष्ट हो जाता है तुम्हारे देवता भी नष्ट हो जाता है सब नष्ट हो जाता है। लेकिन तुम्हारी समस्या नष्ट नहीं होती है जन्म मृत्यु जरा व्यति दुख दोषा समस्या नष्ट नहीं होती। देवता भी चले जाते हैं और हम भी चले जाते हैं हमारा भी नाश होता है देवताओं का भी नाश होता है पर समस्या का नाश नहीं होता है। तो क्या इसका अर्थ ये होता है कि भगवान किसी के प्रति पार्शियल है और किसी के प्रति इम्पार्शियल है या फिर ऐसा है कि किसी को भगवान ज्यादा देते हैं किसी को कम देते हैं? नो इसलिए भगवान ने यहाँ पर ये भी चीज बताई आगे कि उनकी इच्छा के बिना भी कर्ता कौन है उसके विषय में भगवान बताएंगे। भगवान ने सब अलग अलग देवताओं में ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सुविधाएं बनाई है जिसमें ऑल वेराइटीज जिसको ये चाहिए उसको उसके ये चाहिए उसको। तो भगवान यहाँ पर ये बताना चाहते हैं 13 चैप्टर में बताए 13 श्लोक में बता दे कि आई हैव मेड दिस सिविलाइजेशन वर्णाश्रम जिससे सबको न्याय मिले सबको जिसकी जो इच्छा है वो पूरी हो सकती है। सो दैट फर्दर गोस यू वांट टू यस
मैं सोच रहा था कि जैसे ये 2-3 श्लोकों में से क्वेश्चन है और जैसे खास करके जो मठ भावम है और ये जो देवता और 11 तीनों श्लोकों के काफी सारे फॉलोअर्स है जैसे दो पर्टिकुलर संप्रदाय एक स्वामी नारायण और ये रामकृष्ण। तो मतलब एक तरह से देखा जाए तो इफ दे आर रियली मतलब वो अच्छी तरह से कर रहे तो मतलब वो स्वामी नारायण का जप करते हैं या रामकृष्णाय नमः ऐसा कुछ जप करते हैं उनका गुप्त मंत्र होता है जो भी। तो अगर वो जैसे शरीर छोड़ते वक्त अगर वो लोग ये करे राइट तो मतलब उनका क्या गति होगा अगर वो अच्छी तरह से कर रहा है सब कुछ तो?
यस गुड क्वेश्चन। यहाँ पर भगवान जब बताए ये तमाम प्रबद्धन्ते जो जिस भाव से मेरे पास आना चाहता है वो उस भाव से मेरे पास आता है वो उसको प्राप्त करता है। अभी स्वामीनारायण या जो भी आप बताए दूसरा भी अगर इन लोग की प्रोसेस चाहे वो स्टैंप किसी की भी संप्रदाय का हो लेकिन उनकी प्रोसेस या उनका जो मेथड है या जो भी आचरण सिखाया जाता है उनको ये कहीं पर भी शास्त्र पर आधारित है जो शास्त्र विधान से उपयुक्त है फॉलोइंग है देन दे मे गेट सम रिजल्ट। लेकिन मैन मेड कॉन्कॉक्टेड अगर कुछ चीज है और कॉन्कॉक्टेड का अर्थ क्या हुआ कि एक्स आदमी ने बना करके दिया है और उसका शास्त्र से कोई प्रमाण नहीं है, शास्त्र से कोई आधारित नहीं है वो चीज, तो उसको वो गति प्राप्त होगी जो एक आदमी की गति है, जो एक आदमी ने बनाई है उस प्रकार की गति को ही विल गो दैट। और इन जनरल अगर आप इन जनरल देखो तो ही विल बी बाउंड बाय द लॉस ऑफ कर्म, वॉट एवर कर्म इज डूइंग ही विल बी बाउंड बाय दैट।
क्वेश्चन ऐसे भी है कि अज्ञात सुकृति उस पे मतलब हो सकती है अप्लाई,
वही दैट्स व्हाट आई एम
सेइंग, मतलब कोई और संप्रदाय जिसमें भगवान के कोई नामों का उच्चारण है ही नहीं तो उसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं, मगर इसमें है तो उसकी बात कर रहा हूँ।
देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ अज्ञात सुकृति, अलग अलग प्रकार की अज्ञात सुकृति होती है, लेकिन इसमें से भक्ति उन्मुख अज्ञात सुकृति कम होती है, जैसे स्वर्ग के प्रति अज्ञात सुकृति, पुण्य फिर मुक्ति के प्रति अज्ञात सुकृति, भोग के प्रति अज्ञात सुकृति, ये सब बहुत प्रकार की सुकृतियां होती है। अज्ञात सुकृति का अर्थ क्या होता है कि अननोइंगली कोई अच्छा काम कर लिया आपने जाने बिना, आपको नहीं पता था, और कोई पुण्य काम कर लिया तो इसका कुछ परिणाम मिलना चाहिए कि नहीं, ऐसे लाइक दैट। तो अननोइंगली अगर हम कुछ भी करते हैं तो उसका अगर वो पुण्य कर्म है तो परिणाम अवश्य मिलेगा, लेकिन वो भक्ति उन्मुखी है या मुक्ति उन्मुखी है या भोगोन्मुखी है, ये उसके एक सुकृति के आधार पर। ऑफ कोर्स इस विषय की चर्चा आगे वाले अध्याय में आती है, ये सुकृति अलग अलग प्रकार की होती है उसमें, लेकिन इन इन जनरल सारे पुण्य कर्म भक्ति को जन्म नहीं देते। अगर मैं कुआं खुदवाता हूं या किसी आई कैंप खुलवाता हूँ तो ऐसा जरूर नहीं है कि ये सारे पुण्य कर्म आपको भक्ति को जन्म दे, इट्स नॉट नेसेसरी। सो 13 टेक्स्ट नंबर 13 में वर्णाश्रम के विषय में भगवान बताते हैं, पढ़िए यहाँ एक्चुअली भगवान ये बताना चाहते हैं कि ही इज नॉट द डूअर, मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, वो सबकी इच्छा है अपनी अपनी है, उस हिसाब से उसको जो चाहिए दे देता हूँ, वो भगवान को कहना चाहता
हूँ। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के चार विभाग रचे गए, यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सोचता हूँ किंतु तुम्हें जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय करता हूँ।
स्पष्ट बयान है यहाँ पर, क्या बताया है, तीन गुणों के अनुसार चार प्रकार के मैंने ये बनाए हैं, चातुर्वर्ण्य मया सिस्टम गुण कर्म विभाग। प्रभुपाद इस चीज को बहुत एम्फोसाइज किए, बहुत एम्फोसाइज किए अपने लेक्चर में, गुण कर्म विभाग, गुण कर्म विभाग है। जो हाईकोर्ट जज का बेटा है इसको हाईकोर्ट जज की गद्दी पे जाकर बैठ जाएगा तो उसको एक्सेप्ट करेगा, बोले क्यों, आई एम द सन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट, कोई उसको एक्सेप्ट करेगा नहीं। सिमिलरली अगर कोई डॉक्टर है, डॉक्टर का अगर बेटा है बिना कोई डिग्री के डॉक्टर की यू नो सेवा करना शुरू कर देगा तो ये पॉसिबल है, नोबडी कैन एक्सेप्ट हिम एज अ डॉक्टर। तो इस तरह से गुण कर्म के आधार पर प्रॉपर एक एग्जाम्पल लिया था कि मिस्टर गोल्डस्मिथ क्वालिफाइड लॉयर, ही इज अ लॉयर, लेकिन उसका अगर बेटा अगर ये कहेगा कि आई कैन बी लॉयर, दैट इज नॉट पॉसिबल। हर एक व्यक्ति ऐसा सोचता है इस संसार में कि वो दूसरे से अच्छा है, हर एक व्यक्ति ऐसा सोचता है आई एम बेटर देन अदर्स, तो ये तो स्वाभाविक है कि ही इज द बेस्ट ऐसा मानता है, लेकिन कृष्ण इन सब चीजों को ध्यान में नहीं रखते, वो गुण कर्म ही में से आई एम ब्राह्मण, आई एम ब्राह्मण, दैट डजंट मीन यू आर ब्राह्मण, ब्राह्मण बाय क्वालिटी। वो कृष्ण को कोई कृष्ण को बोल फर्क नहीं पड़ता कि तुम ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो, तुम्हारे गुण और कर्म के आधार पर तुम अपने आपको प्रूव कर रहे हो कि तुम कौन हो, भगवान प्रॉपर एग्जाम्पल दिए, दस चक्र भगवान भूत है, एक बंगाली में कहावत है ऐसा, दस चक्र भगवान भूत है, तो उसमें ऐसा था कि एक भगवान नाम का एक ब्राह्मण था, उसका नाम भगवान था और उसके 10 शत्रु थे, तो जब भी वो जाता था तो ये 10 शत्रु अलग अलग स्थान पर छुप गए। जैसे अगर समय यहां से अगर मंदिर जाता था तो चल के जाता पैदल, तो 10 स्थान पे थोड़े थोड़े अंतर पर 10 शत्रु अलग अलग स्थान पे छुप गए और सब लोग एक ही चीज बोलते थे। क्या बोलते थे? ओ तुम भूत बन गए, ओ तुम भूत बन गए, ओ तुम भूत बन गए। तो पहली बार जब उसने सुना ओ तुम भूत बन गए, तो सया है वो कोई बोलता रहता है। आगे जाके दूसरे बोला ओ तुम भूत के होंगे। जब 10वें पे आया तब वो सोचने लगा हो सकता है शायद मैं भूत बन गया हूँ। यू नो, तो 10 चक्रे भगवान भूत है प्रभुपाद से दिस थिंग। सो एवरीवन में से एवरीवन सेज ओ यू आर लो बॉर्न, यू आर लो बॉर्न, यू आर लो बॉर्न, डजंट मीन यू आर लो बॉर्न। अगर आपके कर्म शास्त्र के ब्राह्मण के आधार पर है, ब्राह्मण जैसे काम कर रहे हो आप, तो यू आर ब्राह्मण। सो दिहंते तस्मई प्रभविष्णवे नमः। हिरात हुनांद्र पुलिंद पुलकश आभीर शंभा यवना खसादे ये बाप आयुपाश। ये सब जातियां जो है वो क्षुद्र से भी नीचे है, लेकिन ये सारे अगर विष्णु के भक्त के शरण में आते हैं तो वो लोग ब्राह्मण से भी शुचि हो मुचि यदि कृष्ण त्यजे, मुचि हो शुचि यदि कृष्ण भजे। अगर कोई निम्न कोटि का चंडाल भी है लेकिन वो कृष्ण का भजन करता है वो वैष्णव है। या कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मण होकर भी जघन्य काम करता है तो उसको शुद्र मानना चाहिए। कलयुग में तो ज्यादातर कलयुग शुद्र संभव है, कलयुग में सभी शुद्र बाय बर्थ सभी शुद्र ही होते हैं। जन्म ना जाए जो शुद्र, जन्म से हर एक व्यक्ति शुद्र होता है। संस्कारात भजे द्विज, संस्कार से द्विज बनता है। वेद पाठयति इति विप्र, वेद को पढ़ने वाला विप्र माना जाता है। और ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। इसलिए कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण होने का दावा नहीं कर सकता है। जन्म ना जाए तो शुद्र, जन्म से तो हर एक व्यक्ति शुद्र ही होता है। और वो कोई संस्कार वंस्कार नहीं करेगा तो कैसे ब्राह्मण बनेगा? इट्स नॉट पॉसिबल। भगवान भी बताए कि स्त्रिया वैश्यास तथा शूद्रास तेपी आंति परांगति। कोई स्त्री है, कोई वैश्य है या शूद्र है, वो भी अगर मेरे शरण में आता है तो वो भी परम गति को प्राप्त करते हैं। तो इसलिए भगवान यहाँ पर बताए वर्ण, चार वर्ण, चार आश्रम, आई डोंट डिस्क्राइब देम इन डिटेल। लेकिन जैसे भगवान सबके प्रति इम्पार्शियल है तो सबको जिसको जिस प्रकार का इच्छा है कर्म करने का, जो भावना है, कोई पड़ा रहना चाहता है, तमोगुण में रहना चाहता है तो शूद्र, यू नो लेबरर्स काम करना चाहता है, आलसी है, पाप कर रहा है तो शूद्र के जेब। कोई बहुत तेजस्वी है, शास्त्र को पढ़ता है, शास्त्र को पढ़ाता है, शुद्ध रहता है अपने आचरण में, तो वो ब्राह्मण के गुणों को दिखा रहे हैं। तो कृष्णा ने उनके लिए भी व्यवस्था कर दी है। सो वर्ण और आश्रम का इंस्टीट्यूशन भगवान ने गुण और कर्म के आधार पर बनाया, लेकिन उससे वो प्रभावित नहीं हुए। इसका अर्थ ये नहीं होता है कि कृष्ण को भी ये अप्लाई होता है वर्ण आश्रम नहीं। अगर समझ लो कि कोई अगर प्रिजन राजा अगर आता है तो उसको थोड़ी उसका काम करना पड़ता है, जैसे हमने एग्जांपल लिया लास्ट टाइम। इस तरह से जो वर्णाश्रम बना भगवान स्पष्ट बताया, although I am the creator of this system, you should know that I am yet the non-doer being unchangeable. मुझ में कोई परिवर्तन होता नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं बनाता हूं। हालांकि मैंने सिस्टम बनाई है लेकिन मैं उसका कारण नहीं हूं। अगर कोई ब्राह्मण बनता है तो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मी, अगर कोई शूद्र बनता है तो इट्स नॉट ड्यू टू मी। सब अपने अपनी इच्छा से सिस्टम, जैसे एग्जांपल मैंने आपको पहले भी एक बार दिया था कि अगर आप इस कमरे में जाओगे, इस कमरे में जाओगे, चाहे इधर ब्राह्मण है उधर ब्राह्मण बन सकते हो, उधर जाओगे तो शूद्र बन सकते हो, इधर जाओगे तो वैश्य बन सकते हो, तो ये सिस्टम बनाकर रखकर छोड़ दिया। नाउ इट्स योर चॉइस, आपको कहां जाना है। It's your choice. So, same thing. जो डूअर की बात हुई थी, मैंने पहले एक बार बात किया था ना, वो करता कौन? प्रकृति करता है, भगवान करता है या जीव करता है? तो एक रूप से देखा जाता है, तीनों ही करता है, isn't it? तो भगवान बनाया तब जाके हुआ, लेकिन ध्यान से देखा जाए तो ज्यादातर जिम्मेदारी आती है चॉइस बनाने वाले की. जिसने चॉइस की है वो एक्चुअली देखा जाए तो मूल कर्ता के रूप में होता है. सो अगर समझ लो कि कोई व्यक्ति मुझसे कुछ मांग रहा है और मैं उसकी इच्छा पूरी करता हूं, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि somebody is connected with me. किसी ने कुछ मांगा, मैंने उसको कुछ दिया, इसका अर्थ हुआ कि वो मेरे साथ कहीं ना कहीं संपर्क में आया, राइट? लेकिन भगवान यहाँ पर कहते हैं कि वो संपर्क में आने के बाद भी अनचेंजेबल है, उनमें परिवर्तन नहीं आता. वो उनका आध्यात्मिक जो स्तर है वो कायम बना रहता है, इज इंटैक्ट. स्पिरिचुअल कौन सा? यू नो, ट्रांसेंडेंटल, थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर. और जो संपर्क में आने वाले लोग है वो कौन है? अंडर थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर. इट मे बी लिटल टेक्निकल बट इट इज इजी टू अंडरस्टैंड दैट ही इज सेम एज ही इज. उनका कहीं पता नहीं होता, कोई आरोप लगा सकता है, इसलिए क्लैरिफाई कर दिया. सो कृष्ण अकर्ता है, कृष्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता हमारे कर्मों की. ही डज नॉट टेक, वो नॉन डूअर है, उनको किसी चीज की इच्छा नहीं है. जो टेक्स्ट नंबर 14 में पढ़िए आप, बताते हैं इसी चीज को.
मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं मैं कर्म फल की कामना करता हूँ. जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पास में नहीं बनता.
हाँ, यहाँ पर एक भी नवाम कर्माणि लिम्पन्ति, मुझे कोई कर्म स्पर्श ही नहीं कर सकता. मैं कुछ भी कर्म करूं उसका रिएक्शन नहीं आता मुझे. मक्खन चोरी किया कि नाउ यू हैव टू अंडर गो दैट, आपको उधार आपको एक कर चुकाना पड़ेगा. रासलीला किया तो उसका पाप लगेगा आपको. वो लोग क्या बोलते हैं, जो लोग बोलते हैं ना तीर्थंकर बनेंगे, वो लोग क्या बोलते हैं कि वो युद्ध में बहुत सारे लोग मरे ना, तो उसका जिम्मेदारी तो इसका ही है. सारे लोगों का संहार, कितने 64 करोड़ लोगों का संहार हुआ, तो बोले इन सब का जिम्मेदारी तो इसका ही है, इसलिए उसके पाप भुगत रहा है. भगवान बता रहे नमाम कर्मों की निम्पत्ति, मुझे कुछ स्पर्श नहीं करता है. सारे कर्मों से पर हूं, आई एम द किंग, आई एम द बॉस. किंग डज नो रॉन्ग, राजा का भी गलती कर ही नहीं सकता है. ये शास्त्र का नियम है, ये कॉमन नियम है, राजा गलती नहीं कर सकता. राजा जो बोलते हैं वही रूल बन जाता है. रूल बनाने वाला थोड़ी रूल के अंदर में आता है, वो तो रूल के ऊपर ही रहता है हमेशा. और दूसरा कहते हैं मुझे किसी चीज के प्रति स्पृहा नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं कि मुझे प्राप्त करना शेष है. न मैं कर्म फल स्पृहा, मैंने इतना किया मुझे इतना तो कम से कम मुझे सुनना का तो हो. ही डजंट केयर, ही डजंट बॉदर अबाउट इट, उनको कुछ नहीं पड़ी है. लेकिन जो इस तरह से भगवान को जानता है उसको ये दोनों क्वालिटी प्राप्त हो जाती है कि उसके कर्म में वो फंसता नहीं है और उसको किसी कर्म में उसका आसक्ति रहता नहीं है. डज नॉट बिकम एंटिकल इन द फ्रूटिव, कर्म उससे मुक्त हो जाता है. तो यहां पर भगवान स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि देखो तुम्हारा बिजनेस तुम संभालो, मैं इसके जिम्मेदार नहीं हूं. राइट, आई एम नॉट द डूअर. भक्त का भी ऐसा हो जाता है, वैष्णव का भी सिचुएशन ऐसा हो जाता है, वो भगवान के आधार पर ही उसकी गाड़ी चलती है. पूरा कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल भगवान के हाथ में रहता है. इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. अगर कोई जज है, हाई कोर्ट का जज, अगर उसने किसी को बोल दिया आज तुम्हारी फांसी है, तो वो क्या, वो हत्यारा हो गया? नहीं, अर्जुन को भगवान ने बोला खत्म, कौरव सेना को उड़ा दो, तो कौरव सेना को अर्जुन का हत्यारा हो गया? नहीं, इट्स अ जस्टिस। तो इसको हाईकोर्ट का जज है, उसको इसका परिणाम नहीं भुगतना पड़ता है। क्यों? क्योंकि भगवान एक बहुत सुंदर एग्जांपल प्रभुपाद तात्पर्य में देते हैं यहाँ पर, मे बी आई इज दैट एनीथिंग अबाउट रेन, एनीवे आई जस्ट एक्सप्लेन दैट। जैसे भगवान का कैसा है कि वो एक वर्षा की तरह है, वर्षा की तरह कैसे कि जैसे वर्षा का पानी है, कैन यू रीड दैट?
उदाहरणार्थ पृथ्वी पर उगने वाली विभिन्न वनस्पतियों के उगने के लिए वर्षा उत्तरदायी नहीं है, यद्यपि वर्षा के बिना वनस्पति नहीं उग सकती।
फर्दर
वैदिक स्मृति से इस तथ्य की पुष्टि इस प्रकार होती है।
ट्रांसलेशन
ऑफ दिस वर्स, भौतिक सृष्टि के लिए भगवान ही परम कारण है, प्रकृति तो केवल निमित्त कारण है जिससे विराट जगत दृष्टिगोचर होता है।
ओके, सो भगवान को यहाँ पर तुलना की वर्षा के साथ। अभी देखो, वर्षा अहमदाबाद में भी होती है, वर्षा भूमि के ऊपर होती है, अहमदाबाद शहर के जंगलों में कॉन्क्रीट जंगल में भी होती है, वर्षा समुन्द्र में भी होती है, लेकिन कुछ जगह पर कुछ भी नहीं उगता, कुछ जगह पर गुलाब के फूल उगते, कुछ जगह पर संतरा, पाइनएपल, मैंगो, कुछ कहीं पर ये उगता है, कुछ जगह पर कैक्टस। तो इसमें वर्षा का कोई दोष है क्या? वर्षा का कोई दोष है कहीं पर भी? कोई ये कंप्लेन कर सकता है, मैंने मेरे बगीचे में कहीं पर आम लगे ही नहीं और बाजू वाले के बगीचे में बहुत सारे आम लगे, और मेरे यहाँ पर तो सब जगह कांटे ही कांटे हो गए, इस बार बारिश ढंग से नहीं हुआ, इधर पार्चर रेडी हुआ। तो अभी वर्षा अगर भगवान है, लेकिन उसमें जमीन में बीज किसने डाले थे? हाँ, जिसने अगर गुलाब के बीज डाले थे तो उसको गुलाब का पौधा मिला, जिसने मैंगो का बीज डाला था उसको मैंगो का फ्रूट मिला, लेकिन जिसने कांटे ही डाले थे उसको कांटे मिले, लेकिन जिसने कुछ भी नहीं डाला था उसको कुछ भी नहीं मिला। तो हु इज रेन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, वर्षा रिस्पॉन्सिबल नहीं। जिस तरह से भगवान के भक्त रवि भी कृपा देते हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु भी कृपा देते है ना, क्या बोलते हैं, तो वहां बिना के दयालु जगत संसार है ना, आप तो कितने दयालु दयालु हो, आप तो महावदान न्याय हो, पतित पावन तव उद्धार, तव उद्धार मौसम पतित, ऐसे सब यू नो विप्रे। तो मैंने एक प्रश्न पूछा जगन्नाथ प्रभु को, ही सो मर्सीफुल, सो मर्सीफुल, सो मर्सीफुल, एक्सट्रीमली मर्सीफुल, देन वाई दैट एवरीवन इज नॉट बीइंग यू नो गेटिंग, यू नो वी डोंट सी दैट मर्सी इज एवरीवेयर। ऑफकोर्स वी सी, कोई लोग चैंट कर रहे, लेकिन अगर सभी लोग, अगर समझ लो मेरे केस की बात करी, माई केस, तो मैं उनकी कृपा को प्राप्त क्यों नहीं कर पा रहा हूं? तो ऑफकोर्स जनरलाइज में भी आप कह सकते हो हरे कृष्ण मंत्र का जप करना इज अ बिग अचीवमेंट, ये कृपा, लेकिन वाई नॉट? तो ये कृपा वैष्णव की हो, चाहे आध्यात्मिक गुरु की है, प्रभुपाद की है, ये चैतन्य महाप्रभु, ये कृपा बिल्कुल वर्षा ऋतु की तरह है। जैसे भगवान का एग्जाम्पल यहाँ पर, आपने क्या बोया है ऐसे आपकी कृपा प्राप्त होगी, कृपा यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन कृपा को एब्जॉर्ब करने वाला, उसको उसको रिसीव करने वाला यू नो हमें बनना पड़ता है। कृपा प्राप्त ये नहीं प्रभु हे गुरु महाराज थोड़ा कृपा दे दीजिए, कृपा दे दीजिए, तो क्या कृपा मीन्स वॉट, लड्डू होता है क्या कृपा? यस
सेम थिंग प्रभुपाद के एक उसमें है, तो आप जो बोल रहे थे ना, वो एक कोई इंडियन कोई थे, बोल रहे थे प्रभुपाद वी वॉन्ट योर मर्सी, आपकी कृपा चाहिए, प्रभुपाद मेरे पास इतना कृपा, मगर आप लेते नहीं हो।
यस,
इट्स द सेम थिंग,
आई हैव लॉट ऑफ मर्सी, इसलिए मैं तो आई मीन प्रैक्टिकली देयर इज नो यूज टू, ऑफकोर्स ये अच्छा है प्रार्थना कि आप मुझे कृपा दीजिए, लेकिन कृपा जब मांगते हो तो कृपा लेने के लिए भी तैयार रहो। जब गौकृष्ण स्वामी के पास कोई गया था कृपा दीजिए। बोले मेरा कृपा है कि तुम वैराग्यवान बनो। सब प्रकार की तुम्हारी भौतिक कामनाएं नष्ट हो जाए। आर यू रेडी? नो 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 नो, आई एम नॉट रेडी फॉर दैट। मैं उसके लिए तैयार नहीं हूँ, मैं सब कुछ घर बार छोड़ करके नहीं। हाँ तो बोले चले जाओ वापिस, देन माई कृपा कैन नॉट कम टू यू। तो जब आप कृपा, ऑफकोर्स ये बाबा जी महाराज की तो बात अलग है, लेकिन जब कृपा तब हम मांगते हैं आध्यात्मिक गुरु से, चैतन्य महाप्रभु से, सो वी मस्ट अंडरस्टैंड जिसने जो बोया है उसको वो मिलेगा, जिसकी जो इच्छा है उसको वो मिलेगा। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि एक भक्त को अधिक कृपा प्राप्त हुई और मुझे कम कृपा प्राप्त हुई। ये आरोप मत लगाना भगवान या गुरु के ऊपर कि उन पे ज्यादा कृपा दिया या मुझे कम कृपा दिया, ऐसा नहीं होता है। कृपा सबके समान, सबके प्रति समान होती है कृपा, सबके प्रति। लेकिन कृपा ग्रहण करने वाले अलग अलग होते हैं। दैट इज कृष्ण, सेम थिंग फॉलो करते गुरु गुरुजन लोग। यस,
हाउ टू बिकम एलिजिबल टू रिसीव द कृपा?
गुरु मुख पद्मा वाक्य, फॉलो एक्सैक्टली व्हाट ही सेज। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक हक्रो नंदन, दैट इज द की। गुरु का कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कहीं पर भी कम नहीं होना है। डोंट गो लेस इन फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ गुरु, गुरु मुख पद्मा वाक्य, तो कृपा अपने आप हो जाती है। क्योंकि कृपा कैसे होती है, फॉर एग्जाम्पल एक गुरु है, एक्स गुरु है, अपने डिसाइपल को कृपा देना चाहते तो क्या करेंगे? कोई एप्पल देंगे? नहीं, आदेश देंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे, डू दिस, दैट इज कृपा। उसी को कृपा बोलते, यू डू दिस। फिर आप कहेंगे लेकिन गुरु जी आपने उसको तो ये इंस्ट्रक्शन दिया और मुझे ये इंस्ट्रक्शन दिया। तो गुरु जी क्या कहते हैं, क्योंकि वो उस इंस्ट्रक्शन के लिए क्वालिफाइड था और तुम इस इंस्ट्रक्शन के लिए क्वालिफाइड हो, सो देयरफॉर मैंने ये दिया। जब जिस दिन तुम उस इंस्ट्रक्शन के लिए क्वालिफाइड हो जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ भी वही कार्य, हो सकता है साथ उससे अधिक गहरा इंस्ट्रक्शन में तुम्हें दू, यू नो एनी टाइम इट इज पॉसिबल। सो एवरीथिंग वी हैव टू एक्सेप्ट इन दैट वे। ऑफकोर्स गुरु के प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए। कई बार हम भक्तों को भी देखते हैं शिष्य गुरु के प्रति द्वेष करते हैं, दिखा नहीं सकते ना, शास्त्र से वो जानते हैं कि दिस इज इमोरल, दिस इज अनऑथोराइज, वो जानते हैं, लेकिन अंदर से थोड़ा सा रहता है इस शिष्य को ज्यादा कृपा दे रहे, ही इज फेवरिंग हिम, मुझे नहीं दे रहे, मुझ पर इतना कृपा नहीं। डोंट डू दैट, ही इज इक्वल बट ही इज एक्सेप्टिंग व्हाट ही सेज एंड यू आर नॉट एक्सेप्टिंग व्हाट यू आर ही सेइंग, देयरफॉर यू गेट लेसर इंस्ट्रक्शन एंड ही गेट हायर इंस्ट्रक्शन। Same way, favor is also like that. So, वर्णाश्रम भगवान ने बनाया, लेकिन भगवान उसका करता, उसको उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सेम थिंग, आप गुरु को ये नहीं कह सकते कि यू आर रिस्पॉन्सिबल। आई नो वन डिवोटी, जब भी उससे बात करता हूं एक ही बात बता देता है, ही इज रिस्पॉन्सिबल, गुरु इज रिस्पॉन्सिबल, गुरु इज रिस्पॉन्सिबल। और मैं हमेशा उसको ये बोलता हूँ, यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू आर रिस्पॉन्सिबल, आई ऑलवेज टेल हिम लाइक दिस। शास्त्र ये कहते हैं, मैं नहीं कहता, शास्त्र ये कहते हैं कि यू आर रिस्पॉन्सिबल। सो यस,
बोल सकते हैं कि हमारी जो उन्नति हो रही है उसके लिए तो वही रिस्पॉन्सिबल है।
हाँ, लेकिन उन्नति करना नहीं करना इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल है। प्रोवाइड फैसिलिटेटर, फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसका फैसिलिटी का उपयोग करना ये हमारा काम है। ऑफ कोर्स अभी रिसेंटली मुझे किसी ने बताया कि भक्ति शास्त्री डिवोटी जो है, और जब वो पास आउट हुए तो व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट फ्रॉम देम, जनरली क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए उनसे, कि वो लोग प्रभुपाद के सेवाओं में जुड़े, इस मंदिर की सेवाओं में जुड़े और एक्टिवली जुड़े, अधिक सेवाएं करें, ये एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए, राइट? So we provide the facility. Now you have to make your mind. Now you have to make your determination strong. You have to get that thing. We can just try best. मैं आपको ये explain करके बता सकता हूँ, exercise करके बता सकता हूँ, आप अलग अलग प्रकार का you know brainstorming हो सकती है, आप assessment होगी आपकी, ऐसे writing होगी, सब कुछ सारी process follow करेंगे हम. But finally जो करना है devotee को सेवा, you know that is your own choice. हाँ, अगर फिर इसके बाद भी अगर कुछ परिवर्तन नहीं आता है तो ऑफ कोर्स देयर इज अ लैक ऑफ ट्रेनिंग फ्रॉम माय साइड, बट एट द सेम टाइम लैक ऑफ डिजायर. सो अभी आने वाले कुछ वी कंप्लीट 14 और 15
14
ना, वी कैन गो फर्दर 15 पढ़ी आगे.
प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो.
किस तरह से उन लोगों ने किया था, एक्टिंग विद प्राचीन काल में, अंडरस्टैंडिंग माई ट्रांसेंडेंटल नेचर, मेरे भाव को समझ करके, मत भाव को, इस तरह से तुम उनके चिन्हों पे चलो. भगवान कहते हैं अर्जुन को कि देखो, पहले के समय में भी लोगों ने मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म किया और मुक्ति प्राप्त किया था, उन लोगों ने मुक्ति मिला था, तुम्हें मुक्ति चाहिए तो ये करना चाहिए तुम्हें, इस तरह से तुम मुक्त हो सकते हो. सो दिस इज द वे यू कैन डिलीवर योर सेल्फ. भगवान ने यहाँ पर बताया, जैसे प्रभुपाद एक एग्जाम्पल में बताए थे, प्राचीन काल का एग्जाम्पल जब बताया तो आई जस्ट रीड द फर्स्ट लाइन. लेक्चर इन बॉम्बे 1974. नाउ इन दिस वर्स थ्री टाइम्स फोर टाइम्स द वर्ड हैज बीन यूज्ड, पूर्वतरम पूर्वतमय कुरु कर्म तस्मात्म पूर्वई पूर्वतरम कृतम, पूर्व पूर्वतरम पूर्वतम प्राचीन. तो फिर प्रभुपाद एग्जाम्पल यहाँ पर प्रभुपाद एग्जाम्पल में उस समय ये बताया था कि प्राचीन काल का अर्थ होता है कि इट इज ऑलरेडी सिस्टमाइज्ड, वी शुड फॉलो इट. इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि यू नो लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस इज ओल्ड, एवरीवन इज टेकिंग बर्थ, दिस इज ओल्ड सिस्टम, एवरीवन इज टेकिंग बर्थ, एवरीवन इज ग्रोइंग, दैट्स ओल्ड सिस्टम. सो everyone is dying, everyone is disease, can the modern system stop this? Sun is also following the old system, surya bhi purani jo system hai usko follow karta hai, wahi uthta hai, upashti purva se yukta hai, pashchim mein rutuyein bhi purva purani system ko follow karti hai. Everyone is, Prabhupada says it is not modern, all living entities are eating in the same manner. सब लोग जैसे ओल्ड सिस्टम, दे वेर स्लीपिंग, दे वेर हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड दे वेर डिफेंडिंग एंड टुडे आल्सो इट्स हैपनिंग. आज भी वही सिस्टम चल रही है, पुराना सिस्टम. सो इसका अर्थ ये होता है कि हमें प्राचीन काल का अर्थात भगवद गीता को पढ़ करके इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, इसको फॉलो करना चाहिए. That's the old system. Okay, so अभी किस तरह से कर्म को ज्ञान के रूप में देखना, आई मीन आई ट्राई टू कवर एज मेनी श्लोकास वी कैन डू टूडे. कर्म को ज्ञान के रूप में देखना, तो इसके विषय में टेक्स्ट नंबर ये कुछ आने वाले इस श्लोकों में यही चीज को बताया जाएगा. अकर्म क्या है, कर्म क्या है, विकर्म क्या है, इसको बताया जाएगा कुछ 8-9 श्लोकों में. 9 श्लोक में ये सब बताया जाएगा। टेक्स्ट नंबर
60
इस पढ़िए।
कर्म क्या है और अकर्म क्या है इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे।
यस, तो तीन चीज यहाँ पर है, तीन, कर्म, अकर्म एंड विकर्म। और इस संसार में हर एक वस्तु, एक रूप से देखो तो हर एक वस्तु अशुभ ही है। एवरीथिंग मटेरियल इज ऑल अशुभ। और कोई एक ये नहीं कह सकता है ना कि मैं भौतिक संसार में बहुत सारी मेहनत करके कुछ शुभ प्राप्त हुआ। देयर इज नथिंग लाइक, यहाँ पर कुछ भी शुभ नहीं है। एवरीथिंग अशुभ, क्योंकि ये भौतिक संसार अपने आप में अशुभ है। एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट कर सकता है हमारा कि यहाँ पर ये अच्छा है, बट इट्स ऑल इनऑस्पिशियस, ऑल इनऑस्पिशियस। एक बार प्रभुपाद कोबे में गए थे, कोबे जगह है, तो वहां पर एक व्यक्ति बहुत ही आसक्त था अपने घर से। तो क्या होगा कि अब बहुत ज्यादा आसक्ति है, तो नेक्स्ट एज पर द लॉ उसका क्या परिणाम होगा, वो जन्म लेगा उसी घर में। लेकिन उसका कर्म ऐसे है नहीं कि वो मनुष्य बनेगा, उसके कर्म ऐसा है नहीं, तो क्या बन सकता है फिर? कॉकरोच बन सकता है, चूहा बन सकता है, छिपकली बन सकता है, राइट? लेकिन घर तो वही मिलेगा उसको, क्योंकि वो अटैच था उसके प्रति। इसलिए यहाँ पर चाहे वो अच्छा है बुरा है, आसक्ति है विरक्ति है, कुछ भी है, बट मटेरियल वर्ल्ड इटसेल्फ इज इनऑस्पिशियस। यहाँ पर कुछ भी ऑस्पिशियस है ही नहीं। वी शुड नॉट थिंक कि कुछ तो यहाँ पर अच्छा होगा ना, कुछ भी अच्छा नहीं है मटेरियल वर्ल्ड में, कुछ भी अच्छा नहीं है। सब कुछ नष्ट है, सब मोह से बना हुआ है, इल्यूजन से। कौन सी इल्यूजन? हम सोचते हैं ये सब रहेगा हमेशा, नहीं रहेगा, सब नष्ट हो जाएगा। तो अभी नेक्स्ट, पहले भगवान वो बताएंगे आपको विकर्म, बाद में फिर कर्म और कर्म बताएंगे। तो पढ़िए टेक्स्ट नंबर।
कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वो ये ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है।
मुश्किल है, इट्स नॉट इजी। कर्म, अकर्म, विकर्म, संक्षिप्त में अगर आपको बता दिया जाए, कर्म उनको कहा जाता है कर्म जो शास्त्र के आधार पर किए गए होते हैं, उसको कर्म कहते हैं। शास्त्र के इंजंक्शन को फॉलो करते हैं, शास्त्र में कहा है ये करो वो करो, उसको फॉलो करना, उसको कर्म कह सकते हैं। जनरली इस प्रकार के कर्म को कर्मकांड के साथ तुलना की जाती है। अपनी अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए लोग जो कर्म करते हैं उसको कर्म कहा जा सकता है। और विकर्म उसके विपरीत, शास्त्र में बताया है कि किसी की हत्या मत करो, लगो उसकी हत्या, किसी की हत्या करना, मांस खाना, नशा करना, ये शास्त्र में प्रोहिबिटेड है, डोंट डू। और वो जो भी करेगा वो सब विकर्म माना जाएगा। वी मीन्स विरुद्ध, विपरीत कर्म, विकर्म, कर्म विकर्म और अकर्म। अकर्म एक ही उसका डेफिनेशन होता है जिसमें कर्म के फल नहीं मिलते, जिसमें कर्मों का परिणाम नलिफाई वॉटर। यहाँ पर कर्म का आपको फल नहीं मिलता, यू आर, आप कर्म करते हो लेकिन उसका रिजल्ट आपको फेस नहीं करने पड़ते। कृष्ण भक्ति, तो कृष्ण भक्ति में कर्म के फल नहीं मिलते। बोलता है ना कर्मा फ्री डाइट, कर्मा फ्री प्रसाद, कर्मा फ्री फूड, फॉरेन होता है कर्मा फ्री फूड, ऐसे लिखा होता है कर्मा फ्री फूड। इसका अर्थ होता है कि इसका कर्म नहीं लगता ऐसे। तो और अकर्म का टेक्निकली अर्थ होता है कर्म से मुक्ति, कर्म नहीं होता। और ये मायावादी लोग अकर्म को क्या कहते हैं, डू नथिंग, डोंट डू एनीथिंग, है ना। ये ज्ञानी लोग बोलो जाता है डोंट डू एनीथिंग, इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। ये अवस्था में क्या होता है, कुछ समय तक वो लोग कर्म को रोक करके हिमालय चले जाते हैं और फिर उसमें से पतन हो जाता है, क्योंकि डू नथिंग का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, कहीं शास्त्र में है ही नहीं, डू नथिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बट बिकॉज देयर, और अभी कॉन्सेप्ट है नहीं, लेकिन देयर इज अ बिग क्लास ऑफ पीपल ज्ञानीज, दे बिलीव देयर इज अ डू नथिंग, कुछ नहीं करना है। सो दिस इज इन ब्रीफ, हमने आपको बताया प्रभुपाद कर्म और विकर्म दोनों को विकर्म के रूप में ही बताते हैं तात्पर्य में, बिकॉज एनीवे कर्म कांड और कर्म जो आपको भगवान के पास नहीं ले जाते अंततः रहता तो आपको यू नो पेन कॉजिंग पेन। सो जो इसको ढंग से समझ जाते हैं, भगवान अपनी भक्ति को स्थापित कर देता है और भगवद गीता के आधार पर कर्म करता है, ही इज डूइंग अ कर्म, उसका कर्म के फल नहीं लगते। और कृष्ण भक्ति के अलावा और कोई भी कर्म है, एक रूप से देखा जाए सारे भी कर्म है। सुनाओ अभी कर्म और अकर्म को डिस्क्राइब किया जाता है नेक्स्ट श्लोक में।
जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्य में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है।
तो इसमें ये थोड़ा कंफ्यूजिंग ऐसा लगेगा, इनएक्शन इन एक्शन एंड एक्शन इन इनएक्शन, जो देखता है जो कर्म में अकर्म देखता है अकर्म में कर्म देखता है उसको बुद्धिमान माना जाता है। कहीं हमारे बहुत सारे नॉन डिवोटी जो कमेंटेटर होते हैं भगवद गीता के कमेंटरी लिखने वाले, दे कंफ्यूज देमसेल्व्स एंड पीपल आल्सो, उनको नहीं पता कि इसका अर्थ क्या होता है। इसका बहुत स्पष्ट अर्थ है, प्रभुपाद तात्पर्य में स्पष्ट लिखा हुआ है, बट वी इट्स अ बिग तात्पर्य, राइट, इट्स अ बिग वन, अदरवाइज यू कैन रीड दैट, स्मॉल है, समबडी कैन रीड दैट।
कृष्ण भावनामृत में कार्य करने वाला व्यक्ति स्वभावतः कर्मबंधन से मुक्त होता है, उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं, अतः कर्म के फल से उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती, फलस्वरूप वह मानव समाज में बुद्धिमान होता है। यद्यपि वह कृष्ण के लिए सभी तरह के कर्मों में लगा रहता है, अकर्म का अर्थ है कि है कर्म के फल के बिना निर्विशेषवादी इस भय से सारे कर्म करना बंद कर देता है कि कर्म फल उसके आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक न हो, किंतु सगुणवादी अपनी इस स्थिति से भली भांति परिचित रहता है कि वह भगवान का नित्य दास है, अतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत में कार्यों में तत्पर रखता है। चूंकि सारे कर्म कृष्ण के लिए किए जाते हैं, अतः इस सेवा के करने में उसे दिव्य सुख प्राप्त होता है। जो इस विधि में लगे रहते हैं वे व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित होते हैं, कृष्ण के प्रति उनका नित्य दास्य भाव उसी सभी प्रकार के कर्म फल से मुक्त करता है।
यस, तो यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट डेफिनेशन भगवान ने दिया है, दो लोग का बताया यहाँ पर, एक कृष्ण भक्त, दूसरा मायावादी, ये दोनों के विषय में भगवान ने बताया। यहाँ पर जो अकर्म में कर्म देखता है वो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत होकर के कर्म करता है, जिसका परिणाम उसको नहीं भुगतना पड़ता। कृष्ण भक्ति में यही चीज का स्पेशल बेनिफिट है, क्या है, क्योंकि उसको किसी कर्म का फल नहीं भुगतना पड़ता, अन्य अभिलाषिता शून्यम हो जाता है वो, उसको इट डजंट हैव टू फॉल, उसको कर्म नहीं लगते, क्यों, क्योंकि वो भगवान के लिए ही कर्म करता है, एवरीथिंग उसके जो भी कर्म होते हैं वो कृष्ण को सेंटर में करके किया जाता है, तो वो इनएक्शन में एक्शन देखता है, अकर्म में कर्म देखता है, और कर्म में अकर्म देखने वाला वो अपोजिट है, वो लोग क्या देखते हैं, वो ऐसा सन्यासी जिसने कृष्ण भक्ति स्वीकार नहीं की है, जो कृष्ण भक्ति में जुड़ा नहीं है, उसको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, और वो सोचता है कि उसकी उसके कर्म उसकी प्रगति में बाधा है, वैसा सोचता है, इसलिए कर्मों का प्री मेच्योर त्याग कर देता है, डू नथिंग वाला सोचने लगता है। वो सोचता है कि खाएंगे तो प्रॉब्लम होगा ना, भोग लगाना पड़ेगा, तो आता ही नहीं उसको, उसको पता ही नहीं कि भोग लगा के भी खाया जाता है, तो वो क्या करता है, खाना छोड़ देता है, खाएगा नहीं, समाज में चलना फिरना बोलना सुनना सब छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि ये सारी एक्टिविटीज मुझे माया में ले जाती है। एक बार प्रभुपाद के साथ कोई व्यक्ति चर्चा कर रहे थे, आमने सामने टेबल के ऊपर बैठे थे, टेबल के बीच में एक प्लेट रखी थी, उसमें चार संदेश के पीस थे, और सामने वो व्यक्ति था वो मायावादी था, और प्रभुपाद यहाँ पर चर्चा कर रहे थे, और प्रभुपाद ने कहा कि मायावादी लोग ऐसा सोचते हैं कि कर्म करने से फंस जाते हैं, उनको पता ही नहीं है कि आध्यात्मिक रूप से कर्म कैसे किए जाते हैं, दे डोंट नो, सो दे थिंक एवरीथिंग मिथ्या, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है, तो उनके लिए सब कुछ मिथ्या है, ये कुर्सी मिथ्या है, ये टेबल मिथ्या है, टेबल पे रखी है कटोरी मिथ्या है, कटोरी में रखा हुआ प्रसाद मिथ्या है, संदेश जो है वो भी मिथ्या है, इसलिए तुम लोग ये नहीं खा सकते, लेकिन मैं इसको खा सकता हूँ और उसको खा लिए, सो एक्चुअली वो रखा था उसके लिए। प्रभुपाद ने कहा तुम ये नहीं खा सकते, बट आई कैन ईट इट, देन ही पुट इन द माउथ। सो डिवोटीज जो मायावादी होते हैं प्रीमैच्योर, वो लोग कर्म को रोक लेते हैं, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। सन्यासी भी सांस तो लेगा ही ना, खाना तो उसको भी पड़ेगा, वो भी चलेगा, आत्मा का स्वभाव है सक्रिय होना, तो आप उसको निष्क्रिय कैसे कर सकते हो? सो टेक्स्ट नंबर 19, एक्चुअली क्या होता है, ये लोग का पतन हो जाता है, जो लोग ऐसे भंग कर देते हैं ना कर्म, तो अंदर से पुशिंग होता है कि कर्म करो, लेकिन वो बंद कर देता है आर्टिफिशियली, उसका पतन हो जाता है, फिर वो गिर जाता है। आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम, उच्च अवस्था प्राप्त कर सकता है शायद कभी, पतंति अधः, फिर गिर जाता है। बड़े बड़े हिमालय में जाके तपस्या करेगा, योग साधना करेगा, लेकिन फिर उसको दवाई की दुकान बनानी पड़ेगी, बिकॉज वो आर्टिफिशियल था, अटेम्प्ट आर्टिफिशियल है। हो सकता है उसके पास नॉलेज अभी भी होगा, वो पहले जो पढ़ा था सुना था जो कुछ किया था, लेकिन वो एक्टिविटी को अवॉइड नहीं कर सकता, और उसका बंधन भी लगेगा, फिर जब कर्म होगा तो बंधन भी लगेगा, तो वो अकर्म तो नहीं हुआ क्योंकि वो भक्ति में तो जुड़ा नहीं है, तो अकर्म नहीं हुआ तो क्या होगा, कर्म बंधन, तो उसकी मुक्ति नहीं हो सकती, वो मुक्त नहीं हो सकता। यस, यस डेफिनेटली, मुक्ति परम पद उसको ही बोलते हैं ना, मुक्ति को प्राप्त करना, ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना, वो परम पद बोलते हैं ब्रह्मावादी मायावादी। परम पद को प्राप्त करने के बाद भी, क्योंकि वहां पर भी वॉइड, नो एक्टिविटी, वहां पर भी आपको आपका अस्तित्व नष्ट, आप अस्तित्व नष्ट कैसे कर सकते हो? माया भगवान कहते हैं कि तो मेरा शाश्वत अंश है, तो तुम्हारा अस्तित्व हमेशा रहना चाहिए, तो अस्तित्व चला कैसे जाएगा, आपका अस्तित्व नष्ट कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है।
तो जी यार मैं एक ऐसे विचार आया मेरे मन में, हाँ, कि ज्योति में तो कोई लटक ही सकता है ना, हाँ, तो कोई नहीं सकता,
yes,
तो जब तक लटका है ठीक है, गिरेगा तो गिरेगा नीचे,
yes, और जनरली गिर ही जाते हैं ये लोग क्योंकि इनके पास कोई ठोस आधार ही नहीं है रहने का। वेरी सिंपल, इफ यू स्टॉप, आप सोचिए, एक बार किसी मुझे यशोमा देवेंद्र प्रभु एक बार लेक्चर में बता रहे थे, इधर दैट पॉइंट आई मीन ये मैंने सुना था जब मैं 14 साल 15 साल का था. आई मीन लॉट टॉकिंग अबाउट लॉन्ग बैक. लेक्चर में प्रभु बता रहे थे दैट मेरे माइंड बहुत क्लियरली फिट हो गया कि अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भक्ति में जुड़ने के पश्चात भी इंद्रियों से संघर्ष कर रहा है तो जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति में जुड़ा नहीं है उसके लिए आप क्या कहोगे. उसके लिए आप क्या कहोगे, चाहे वो कितना भी बड़ा विद्वान हो, बुद्धिशाली हो, धार्मिक नेता हो, लीडर हो, फेमस पर्सनालिटी हो, बापू हो, बाबा हो, कुछ भी हो, वो इंद्रियों से संघर्ष नहीं करेगा आप ये कैसे कह सकते हो. इज इट सो कॉमन. आपके पास तो परम दृष्ट्वा निवर्तते का सिद्धांत है कि आपके पास कृष्ण भक्ति है तब आपका हायर टेस्ट आपको मिल रहा है तो लोअर टेस्ट जा रहा है. लेकिन उसको तो हायर टेस्ट मिल ही नहीं रहा है और वो लोअर टेस्ट को त्यागने का बात कर रहा है तो कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है. इसलिए वी डोंट गेट वंडर्ड, यू नो, आश्चर्य नहीं होता हमें अगर कोई बहुत बड़े संत, बहुत बड़े यू नो सो कॉल्ड लीडर का कोई स्कैंडल अगर पेपर में आता है, दैट्स एक्सपेक्टेड. तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये हो सकता है. उसका वैल्यू नहीं है,
कितना ही बड़ा बड़ा हो जाए.
यस, लेकिन अगर उसका पतन होता है तो ये कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं है. वो पतन होने के लिए ही वहां पर पहुंचा था.
शून्यों का समूह भी शून्य
ही होता है. यस, ही बिकम्स जीरो. सो द पॉइंट इज कि जो भक्त नहीं है उससे आप कोई अच्छे गुणों की आशा नहीं रख सकते कि वो यू नो इंद्रिय भोग को छोड़ देगा और उसको फंसेगा नहीं. डोंट एक्सपेक्ट दैट मच. हो सकता है मायावादी सन्यासी होते हैं, दे आर स्ट्रांग हार्ड हार्टेड, लेकिन उनका पतन हो सकता है. दैट इज शास्त्र बताता है.
व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्त की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है. उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है.
सो इट्स अ स्मॉल पर्पट. पढ़िए पर्पट.
केवल पूर्ण ज्ञानी ही कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्य कलापों को समझ सकता है. ऐसे व्यक्ति में इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति का अभाव रहता है. इससे यह समझा जाता है कि भगवान के नित्य दास के रूप में उसे अपने स्वाभाविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान है जिसके द्वारा उसने अपने कर्म फलों को भस्म कर दिया है. जिसने ऐसा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है वह सचमुच विद्वान है. भगवान की नित्य दास्यता के इस ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है. ऐसी अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाने पर कर्म के सारे फलों को भस्म कर सकती है.
तो भगवान का जो भक्त होता है वो इंद्रिय भोग की कामना नहीं करता. अगर वो करता भी है तो वो जानता है कि मुझे इसको त्यागना है इंद्रिय भोग की कामना करने से, क्योंकि अल्टीमेटली वो मिजरेबल हो, वो जानता है जिस थिंग. पर उसको कृष्ण की सेवा में आसक्ति ज्यादा है, वो कृष्ण की सेवा करना चाहता है, वो जानता है कि कृष्ण मेरे स्वामी है और मैं उनका दास हूं. इस तरह से वो किसी भी प्रकार का रिएक्शन क्रिएट नहीं करता. हालांकि उसके द्वारा की गई साधना के द्वारा कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा. कर्माणि निर्दहति, सारे कर्मों का सफाया हो सकता है, सारे कर्मों का नाश रहता है. सुनोताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कृत हृदय तस्तो ये भद्राणि विदुन होती. सफाई हो जाती है सब प्रकार के. यहाँ पर तो ये हायर प्रिंसिपल है, सब इम्प्योरिटीज की सफाई होती है. लेकिन कर्मों के फल में भी भस्मसात करुते तथा कर्म भी भस्मसात. गाय को मारने का कितना बड़ा परिणाम भुगतना पड़ता है. पीपल दे हैव नो आइडिया अबाउट इट. दे डोंट नो, दे जस्ट थिंक इट वेरी चीपली बट दे डोंट हैव एनी आइडिया. गाय को मारने से उसके शरीर पे जितने बाल है उतने हजारों साल उसको, उतनी बार उसको रौरव नरक में जन्म लेना पड़ेगा. सो पेनफुल, देयर नो इमेजिनेशन अबाउट इट. गाय को मारने वाला, और गाय को मारने वाला, उसको बेचने वाला, उसको पकाने वाला, उसको परोसने वाला, उसको खाने वाला, उसको प्रमोट करने वाला, यह सबको एक समान परिणाम प्राप्त होता है. सबको एक समान परिणाम मिलता है. दे डोंट हैव, यू नो, कोई चिंता नहीं लोगों को इस विषय में. लेकिन जो कृष्ण भक्ति में जुड़ता है वो इतने हैवी से हैवी, हेनियस जितने भी ये कर्म है, उससे भी उसको मुक्ति मिल जाती है. जैसे प्रभुपाद के शिष्य है विदेश में जो भक्त बने थे, अगर उनका बैकग्राउंड देखोगे, काऊ को खाने वाले लोग थे, गाय को मार के खाने वाले लोग थे, लेकिन इन सब लोगों ने कैसी बस प्रसाद कर दिया था, कृष्ण भक्ति में जुड़ गए तो सब कर्मों का नाश होने लगा, सब कर्म नाश हो गए. यानी तो स्पेशल कृष्ण भक्ति का ये तो स्पेशल है. अगर आप सोचिए कि अगर हम कृष्ण भक्ति में नहीं जुड़े होते तो हमारे कर्मों का परिणाम इतना भारी है कि हम कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहते. इतने कर्म और आप संसार में, एवरीवन इज लाइक दैट. सो वी हैव टू एंगेज अवर सेल्फ इन कृष्ण सर्विस, दैट्स अकर्म. और यही अकर्म हमारे सारे कर्मों के परिणाम को नष्ट कर सकता है. और वो अकर्म क्या है? व्यवसायत्मिका बुद्धि, एक कुरुनंदन, फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ योर स्पिरिचुअल मास्टर, दैट इज अकर्म. नित्यानंद प्रभु ने कहा जगाई मदाई को, माफ कर दिया, बहुत पाप किए थे जगाई मदाई ने. कितने पाप किए थे किसी को पता है? जगाई मदाई कितने पाप किए थे? वो जो उसका हिसाब करने वाला था ना, वो बेहोश हो गया था. जगाई मदाई का हिसाब जो करता था कर्मों का, चित्रगुप्त, बेहोश हो गया था. तो इतने पाप करने वाले जगाई मदाई, उनको नित्यानंद प्रभु ने क्षमा कर दिया था. गुरु है गुरु नित्यानंद, क्षमा कर दिया. फॉलो आई, तुम मेरी बात को सुनो, मैं तुम्हारे सारे पाप कर्म नष्ट कर दूंगा, सारे पाप कर्म नष्ट कर दूंगा. यही तो है ना गुरु का. जब दीक्षा आप लेते हो तो दीक्षा के समय पर आपके पूर्व अनेक अनेक जन्मों के जितने भी पाप है वो गुरु अपने सिर पर ले लेते हैं. और इसका उस समय उस शिष्य को कोई अंदाजा ही नहीं है कितना पाप कर्म हो ले रहे, बोझा उठा रहे पूरा. ये नहीं सोचना चाहिए कि गुरु को, यू नो, मैं अधिक से अधिक मेरे गुरु के शिष्य बनाऊंगा तो यू नो गुरु बहुत खुश हो जाएंगे. अरे गुरु कहाँ खुश होते, गुरु को मन में चिंता होती है, और इसके कर्म भी मुझे लेने पड़ेंगे, इसका बोझा भी मुझे लेना पड़ेगा. बट इज मर्सीफुल, दया करते हैं, उद्धार करते हैं. तो गुरु जैसे जगह मदन ने किया, डोंट डू दिस प्रभुपाद सेड, मैं तुम्हारे सारे कर्म ले लूंगा लेकिन रिपीट नहीं करना, फिर से गलती नहीं करना, फिर से डोंट डू इट अगेन, दोबारा गलती नहीं करना. जगाई मदा एक बार गए थे चैतन्य महाप्रभु के पास, कहा कि नित्यानंद प्रभु ने तो क्षमा कर दिया लेकिन हमने क्या क्या किया है, वैष्णव को मारा है, ब्राह्मणों को पीटा है, क्या क्या नहीं किया, गायों को कत्ल किया है, ये खून किए है, डाका डाला है, रेप किया है, क्या क्या नहीं किया, ऐसे ऐसे पाप कर्म किए है, और संतोष नहीं हो रहा है. हालांकि नित्यानंद प्रभु ने कहा कि तुम्हारा उद्धार हो गया लेकिन संतोष नहीं हो रहा है, क्या करें. तो चैतन्य महाप्रभु कहा तो मैं विश्वास नहीं हो रहा है, संतोष नहीं हो रहा है. ठीक है, एक काम करो, अब से जितने भी लोग आते हैं स्नान करने के लिए गंगा में, वो जब स्नान करके चले जाते हो, ये घाट को सफाई कर दो, हमेशा साफ रखो इस जगह को, और उनकी सेवा करो, जो लोग आते हैं उनकी सेवा करो. और तुम्हारे विश्वास कराने के लिए मैं तुम्हें एक सूत्र देता हूं, एग्जाम्पल शो. क्या तुम कीर्तन करना शुरू करो अभी, चैतन्य महाप्रभु का उनको जगह मधे ने, तो उन्होंने कीर्तन करना शुरू किया. चैतन्य महाप्रभु तो कौर माना है, और कीर्तन जैसे ही करना शुरू किया जगाई मधाई ने, और धीरे 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 चैतन्य महाप्रभु का वर्ण श्याम हो गया और चैतन्य महाप्रभु कहा कि तुम्हारे सारे कर्म अब मैंने मुझ पर ले लिए। नाउ यू कैन सी आई मीन लेटर ऑन ही आस्क्ड दैट यू चैंट हरे कृष्ण आई मीन फर्स्ट ही सेड दैट आई एम टेकिंग ऑल द रिएक्शन देन यू चैंट हरे कृष्ण फिर वो कीर्तन किया तो कीर्तन से उनका जो श्याम वर्ण है फिर से गौर हुआ। बट देन फिर एक प्रश्न पूछा जगह मधे ने कि आपने हमारे सारे कर्म ले लिए और फिर हमने जब कीर्तन किया तो आपका वर्ण श्याम से वापस गौर हो गया तो हमारे कर्म गए कहां? यू मस्ट हैव इधर बस मसात लेकिन गए कहां? तो चैतन्य महाप्रभु कहा कि वो सारे कर्म मैंने उन लोगों के लिए छोड़ दिया, जगाई मदाई के किए गए सारे कर्म मैंने उन लोगों के लिए छोड़ दिया है जो वैष्णव का निंदा करेगा, जो वैष्णव का अपराध करेगा उसके लिए मैंने वो सारे कर्म छोड़ दिए। आज के बाद जो लोग भी वैष्णव अपराध करेंगे जगाई मदाई का कोटा उनको शेयर करना पड़ेगा। ये चैतन्य महाप्रभु ने 500 साल पहले बोला था। सो इसलिए वी मस्ट सरेंडर टू कृष्णा एंड देन फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ योर गुरु महाराज। ओनली वे ऑफ अकर्म इज टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ गुरु महाराज देन द लाइफ इज सक्सेसफुल। I was thinking to take till 25, but still we had taken like 10 shlokas. तो हमने 10 श्लोक आज कवर किए। आगे के सेक्शन में आता है ज्ञान प्लेटफॉर्म, ज्ञान के स्तर पर रहने वाले व्यक्ति के लक्षण कैसे होते हैं, अर्थात जो भक्त होते हैं उसके लक्षण कैसे होते हैं, उसकी चर्चा हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। सो वी स्टॉप हियर टुडे, वी डिडंट डू एनी एक्सरसाइज, वी नेक्स्ट टाइम विल डू। होते हैं, इसलिए वैष्णव अपराध को टालने का सबसे अच्छा तरीका है यहाँ पर लॉक लगाना। वही बोलो, सोच सोच के बोलो, फर्स्ट अटेम्प्ट। दूसरा है गुरु के आदेश के प्रति निष्ठावान होना। जो कुछ बोला है हो सकता है कि आप 100% फॉलो ना भी कर पाओ, लेकिन वो असंभव वाली बात तो है ही नहीं। अगर आप प्रयास करोगे तो हो ही तो सकता है, ऐसा असंभव तो है ही नहीं कि नहीं होगा। सो इफ यू ट्राई यू कैन बी सक्सेसफुल। और गुरु के प्रति जो अपराध होते हैं उसमें जनरली क्या होता है कि आप आज्ञा का उल्लंघन करते हो, उसको अपराध बोलते हैं, गुरु के प्रति अपराध। लेकिन गुरु जानते हैं कि वो आप प्रोसेस में हो, इसलिए ये गुरु पर निर्भर करता है कि आपके अपराध को लेना या नहीं लेना। तो जनरली वो जानते हैं कि यू आर वीक परफॉर्मर, कमजोर स्टूडेंट है, तो गुरु जानते हैं आपके दीक्षा गुरु या शिक्षा गुरु। सो इस तरह से आपको एनकरेज करते हैं, गाइडेंस देते हैं, डायरेक्शन देते हैं और आपको सेवा में एंगेज करते हैं। And you do that, you follow exactly what he says, then you are getting rid of Vaishnava Aparadha. Shastra ka aisa niyam hai ki agar kisi Vaishnava ke prati aparadh hua hai, agar aap us aparadh se nikalna chahte ho, to first option hai uske paas ja karke kshama mango. Agar wo kshama se prasanna nahi hua, usne kshama kar diya to well and good. आइडियली क्षमा कर देना चाहिए उसको, यही वैष्णव का क्वालिटी है। लेकिन अगर उसने वैष्णव ने क्षमा नहीं किया तो उसकी सेवा करो, उसको प्रसन्न करने का प्रयास करो। अगर उससे भी अगर वो सफल नहीं हुए, अगर आप उसमें भी अगर सफल नहीं हुए, तो आप अपने आध्यात्मिक गुरु के पास उस अपराध की क्षमा मांगो। क्योंकि शास्त्र के नियम से जब आध्यात्मिक गुरु आपको क्षमा करते हैं किसी वैष्णव अपराध के लिए तो इट इज एक्सेप्टेड। जनरली गुरु कहते हैं कि यू गो टू दैट पर्सन, जैसे श्रीवास ठाकुर का अपराध किया था, किसने? गोपाल चापाल ने, है ना, गोपाल चापाल ने अपराध किया था श्रीवास ठाकुर का। तो महाप्रभु के पास आया तो महाप्रभु बोला श्रीवास के पास जाओ, मेरे पास नहीं। बोले तो मैं, मेरे पास आओगे मैं तो तुम्हें श्राप दे दूंगा, तो तुम्हारा सजा उसको 10 times मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे पास मत आओ, चले जाओ इधर। लेकिन जब महाप्रभु संन्यास लेके आए सम टाइम लेटर, तो फिर गोपाल चापाल आया तो फिर महाप्रभु उसको क्षमा कर दिया, बोले कि तुम गोपाल श्रीवास के पास जाओ, उनके शरण ले लो, यू विल बी आउट ऑफ इट। तुरंत गोपाल चापाल गए और उसका जो क्या बोलता था उसका लेप्रसी था वो चला गया। सो मेनी एग्जाम्पल, बहुत एग्जाम्पल है ऐसे। देवानंद पंडित ने भी ऐसा किया था, देवानंद पंडित भी श्रीवास ठाकुर का अपराध किए थे, महाप्रभु फॉरगिव था। अम्बरीश ने दुर्वासा ने किया था, दुर्वासा का, दुर्वासा ने अपराध किया था, तो भगवान बोले मैं तो नहीं कर सकता, सॉरी, जाओ अम्बरीश के पास, अम्बरीश कैन सॉल्व दिस थिंग।
उसमें प्रभु जी भक्त की महिमा भी बढ़ाने के लिए भी होता है।
हाँ, लेकिन ये सिस्टम बना दिया है भगवान ने,
इसीलिए वो भक्त की महिमा होती रही
भक्त का। और एक रूप से देखा जाए तो ये लॉजिक भी सही है, भगवान के द्वारा प्रस्थापित है, भाई जिसको तुमने दुख दिया उसके पास जाओ ना, मेरे पास क्यों आते हो? वो क्षमा करेगा तो क्षमा हो गया। हाँ, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, आइडियल बिहेवियर अगर वैष्णव नहीं करता, वो अम्बरीश महाराज तो अम्बरीश महाराज थे, श्रीवास ठाकुर तो श्रीवास ठाकुर थे, लेकिन अगर एक्स वाई जेड डिवोटी है जो आध्यात्मिक रूप से सिद्ध नहीं है, वो भी प्रोसेस में है, तो हो सकता है कि वो आपके अपराध को महाभागवत अपराध के रूप में स्वीकार करता हो, वो ऐसा मानता है कि आपने बहुत बड़ा अपराध किया। तो आप अपना कर्तव्य करो, अगर वो अपराध को क्षमा नहीं करते इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हो। जैसे मैंने 2-3 ऑप्शन बताया, ये ऑप्शन है शास्त्र में, इसको फॉलो कर सकते हो, बट ऐसा नहीं कि आप फिर हमेशा रोते ही रहो और पड़े रहो, हाय हाय अब क्या करूं, उसने तो मुझे क्षमा नहीं किया, मेरा नष्ट हो गया जीवन, ये गलत है। यू सर्व कृष्ण, कोई भी वैष्णव कृष्ण सर्विस से आगे आपको नहीं बता सकता। आई मीन देयर इज नथिंग बेटर देन यू सर्व कृष्ण, देयर इज नथिंग बेटर देन यू सर्व गुरु। इफ यू आर सर्विंग कृष्ण, इफ यू आर सर्विंग गुरु, देन एवरी डिवोटी, सिंगल डिवोटी मस्ट बी हैप्पी विद दैट, प्रसन्न होना चाहिए। अगर वो प्रसन्न नहीं होता है तो दैट्स हिज फॉल्ट। सो वी स्टॉप हियर, वी हैव टेकन लिटिल मोर टाइम।